ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से। आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि है, तो नरसिंह भगवान के विषय में हम लोग आज, उनके आविर्भाव के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग हाथ जोड़ो एक बार और हम सब मिल करके भगवान नरसिंह देव को पहले प्रणाम करेंगे, तदुपरांत कथा प्रारंभ करेंगे। फल तैयार हैं। स्वभक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारण नरसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद माधवम परमानंद विग्रह। तो आज भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के अध्याय 8 से श्लोक 17 के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। ऐसे श्लोक 1 से और 17 के बीच में मैं बोलूंगा। ये भगवान के आविर्भाव का अंतिम श्लोक है, तो इस पर वार्ता करेंगे। सत्यम विधातु निज भृत भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यताम अति अद्भुतम रूपम उद्वहना अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातु निजभित्तभासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निजवित्तभासित व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निजवित् व्याप्तिं च भूतेश्च क्लेश चात्मन अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। एक बात कहना जरूरी है कि वैष्णव जीवन में सदाचार का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अंग्रेजी में उसे एडिकेट कहते हैं। तो जो जूनियर लोग हैं उन लोगों को चाहिए एडिकेट का पालन करना। और एडिकेट का ये कहता है कि पहले सीनियर लोग श्लोक पढ़ लें, बाद में जूनियर लोग पढ़ें। ठीक है, पहले चांस देना चाहिए सीनियर लोगों को। ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दे रहे थे तो वे आत्माराम श्लोक का व्याख्या किए। उसके बाद सनातन जी महाप्रभु से पूछे, कह रहे आप तो भागवत के एक श्लोक पर इतना बोल दिए, मैं कैसे गुणगान कर सकता हूं? ये तब संभव है यदि आप स्वयं हमारे हृदय में वास कर करके और इसे डिक्टेट करें, मैं लिख सकता हूं। तो वहां पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए हैं क्या क्या करने का। एक तो भागवत के संबंध में टीका लिखने का, साथ साथ भक्त के लक्षण, साधु संग और सदाचार के विषय में। सदाचार के विषय में महाप्रभु ज्यादा जोर दिए, इसीलिए वैष्णव सदाचार संबंधी सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिख डाले, एक ग्रंथ लिख डाले। तो ये सदाचार बहुत जरूरी है, एडिकेट जरूरी है। चलिए पढ़िए, सॉरी। और कोई माताजी सत्यम, सत्य करने के लिए, विधातुम सिद्ध करने के लिए, निजवित्तभाषितम अपने दास के ही शब्दों को, व्याप्तिम उपस्थित, च तथा भूतेषु समस्त प्राणियों में, अखिलेशु समस्त, च तथा आत्मनः अपना, अदृश्यत दिखाई पड़ा, अति अत्यंत, अद्भुतम अद्भुत, रूपम रूप को, उद्वहन धारण कर, अस्तंभे खंभे में, सभायाम सभा के भीतर, न नहीं, मृगम पशु, न नहीं, मानुषम मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी। भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहां है, क्या उस खंभे में है, तो प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हां मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निभ्रांत था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रत्यानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहां उपस्थित हूं। नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों का भी लाज रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था और न सिंह का था। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जनमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग कितना देर तक सुनना चाहेंगे उसके अनुसार मैं अपना टाइम फिक्स करूंगा। आज फास्टिंग है ना, शाम तक निभर का बोलता है शाम तक, तब तो आंख बंद करके बोलना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंहदेव के चरित्र का वर्णन, प्रहलाद महाराज चरित्र नरसिंह भगवान के लीला का वर्णन भागवत महापुराण के सातवें स्कंध में किया गया है। भागवत में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थानम पोषण उतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये सातवां स्कंध है, इसे वासना उतय कहा गया है। अत्र सर्ग विसर्ग अस्थान, तीसरा स्कंध सर्ग है, चौथा स्कंध विसर्ग है, पांचवां स्कंध स्थान है, छठा स्कंध पोषण है, सातवां स्कंध उति। उति का अर्थ है उतय काम वासना है और कर्म वासना, कर्म करने की जो वासना है, इंद्रियों को तृप्त करने की जो वासना है वह उति कहलाता है। अब यह जो उति दो प्रकार का होता है, एक अशुभ और एक शुभ। अशुभा च शुभा चेति द्विविधा सा हेतु भेदतः अशुभा महताम कोपा शुभाम महद अनुग्रहात्। ये कर्म वासना दो प्रकार के होते हैं। संसार में सब लोग दुख भोग रहे हैं और संसार में सब लोग सुख भोग रहे हैं, इसका तीन कारण है। तीन के अलावा चौथा कारण हो ही नहीं सकता है दुख का। जिन तीन कारणों को माता कुंती अपने प्रार्थनाओं में बतलाई है, माता कुंती कहती है, भवे अस्मिन् क्लेशमानानाम् अविद्या काम कर्म भी। इस संसार में क्लेशमानानाम्, क्लेश यानी दुख, बहुवचन, एक नहीं अनेक दुख हैं। भवे अस्मिन्, अस्मिन् भवे यानी संसार में जो क्लेश हैं उनका क्या कारण है, तो माता कुंदी अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञानता। काम यानी वासना, और तीसरा कर्म, कर्मफल। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना और कर्मफल, ये तीन दुख के कारण है। और सुख के कारण बतला रही है क्या है, कैसे तीनों खत्म हो सकता है, तो कहती है श्रवण स्मरण अरहाणी, भगवान का कथा सुन करके, भगवान का चिंतन कर करके और भगवान का पूजा कर करके। तो तीन जो है वो दुख का कारण है और तीन जो है वो सुख का कारण है। वासना सब में है, चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक सब में वासना है। वासना का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। कौन इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहता है, हम लोग अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। हो सकता है कि भक्तों के इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया अलग है, जहां की संसारिक लोगों के इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया अलग है। तो यह जो प्रक्रिया है या जो कर्म है उसे दो रूप में बताया गया है। एक है अशुभ यानी अशुभ कर्म और दूसरा है शुभ यानी शुभ कर्म। अब अशुभ कर्म करने से क्या होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अशुभ महताम कोपह। जो अशुभ कर्म करता है, इम्पायस एक्टिविटी जो करता है, महत कोप, महत मतलब ग्रेट पर्सनालिटी सच एज डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त, और महत का अर्थ होता है भगवान भी। जो लोग अशुभ कार्य करते हैं वे भगवान और भगवान के भक्तों के कोप के भाजन होते हैं। कोप मतलब क्या, गुस्सा, क्रोध, वे क्रोध के भाजन होते हैं। लेकिन शुभ महत अनुग्रहात्, लेकिन जो शुभ कर्म करते हैं वे लोग महत यानी भगवान के भक्त या भगवान के अनुग्रह के कारण बनते हैं। बस यही इसी श्लोक पर ये पूरा सातवां स्कंद है, इस दो श्लोक पर। अब देखिए अशुभ कार्य कौन किए और शुभ कार्य कौन किए, बिगिनिंग से लेते हैं। जय और विजय ये वैकुंठ के वासी थे, ये लोग अशुभ काम किए। अशुभ काम क्या किए, कि सनकादि ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिए। हरे द्वारपयोर वैकुंठे बसतो अपि, वैकुंठ के निवासी थे ये जय और विजय, लेकिन वे अशुभ किए। तो अशुभ कर्म करने का परिणाम क्या होता है, महता कोप भाजनम। वो महता यानी महान पुरुषों के सच ग्रेट डिवोटी सनत कुमारों के को भाजन बने, उन्हें श्राप प्राप्त हुआ। चतुस्सन रुषाम विष्णु द्वेषा अशुभ वासना, इस अशुभ वासना के चलते ये भगवान के द्वेषी बने। अब यहां पर आइए, हिरण्यकश्यपु जब बने, हिरण्याक्ष जब बने, तो इनकी वासना खत्म नहीं हुई थी, ये अशुभ वासना थी, और अशुभ वासना के चलते वे महता कोप भाजनम, अगेन भगवान नरसिंह देव के कोप भाजन बने। लेकिन वही प्रहलाद जो शुभ कर्म किए थे, यानी भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का भजन करना सबसे शुभ कर्म है, संसार का और सब कर्म अशुभ है, केवल कृष्ण का भजन जो है वह शुभ है। जय श्री गौनिताय की जय। इसीलिए भक्ति को शुभदा कहा गया है, भक्ति का एक लक्षण है वो शुभदा है, शुभ ऑल ऑस्पिशियसनेस लाता है। तो जो भक्ति करता है वह शुभ है, वह शुभानंद है, शुभ में आनंद लेने वाला है। तो प्रहलाद जी शुभानंद थे, इसलिए वे भगवान के अनुग्रह के कारण बने। विश्वनाथ ठाकुर बड़ी अच्छी तरह से इसका व्याख्या किए हैं कि जो शुभ कर्म करता है, बुरे से बुरे परिस्थिति में रहे, यहां तक कि असुर के वीर्य से असुराणी के गर्भ में भी रहे, तो भी अपना शुभ या अच्छाई नहीं छोड़ता है। अच्छा व्यक्ति अपना अच्छाई नहीं छोड़ता है, हमेशा वो अच्छा ही रहता है। तो यहां पर शुभ और अशुभ कर्म से यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में सातवें स्कंद में जिसे उति कहा गया है, इसमें क्रमशः 15 अध्याय हैं। उन अध्यायों में से 8वां अध्याय का श्लोक है, 17वां श्लोक है, 8-17। हाँ, जब छठे स्कंद में जब इंद्र वृत्रासुर का हनन किए, वृत्रासुर इतने महान भक्त, जब वृत्रासुर के चरित्र का कथन सुने परीक्षित महाराज कि कैसे वृत्रासुर अपने जीवन के अंत में मरते समय उसका कामना था कि वह क्या करे, अयम हरेतौ पादैकमूलम दासानुदासा भविता संभूयो। कहते हैं यदि जन्म भी मिले तो दासों का मैं दास बनूं, मैं आपका सेवा करते रहूं, यही मेरी इच्छा है। ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा संगति साधुओं का हो। तो इस प्रकार से वृत्रासुर के परम उद्गार को जब परीक्षित महाराज सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ, कहा कि वृत्रासुर इतना अच्छा भक्त थे, भगवान इंद्र का पक्ष क्यों लिए, भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, फिर वे इंद्र का पक्ष लेकर के वृत्रासुर का वध क्यों कराए। यहीं से यह अध्याय प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय। तब सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, यह बात तुम आज नया नहीं कह रहे हो, ऐसे ही बात एक बार तुम्हारे परदादा यानी महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में मुझसे पूछे थे, जब हिरण्यकश्यपु का वध, सॉरी जब शिशुपाल का भगवान
अपने सुदर्शन चक्र से बध कर दिए, तो शिशुपाल की आत्मा भगवान में विलीन हो गई, भगवान के चरणों में विलीन हो गई, शिशुपाल मुक्ति को प्राप्त किया। तो इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ सुखदेव गोस्वामी को, सॉरी युधिष्ठिर महाराज को, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो यह, यहां पर बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है इसी बात को, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अहो अत्यद्भुतम हि एत दुर्लभम एकांतिनाम अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चेद अस्य द्विषी। ये चेदस्य यानी चेदी नरेश शिशुपाल उस दुर्लभ एकांतिक आध्यात्मिक पद को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया, ये कैसे संभव है? इसे तो नरक में जाना चाहिए, तो द्वेषी था। कहते हैं बेन जब निंदा किया तो बेन को नरक में डाल दिया गया, जहां की यह दम घोष अस्तम पापम आराभ्यम कलभाषणात्, यह दंतवक्र और शिशुपाल जब से जन्म लिए हैं, जब तोतला तोतली बोली बोलना शुरू किए, तब से ही पानी पी पी करके कृष्ण को गाली देते हैं, है? पानी पी पी करके, अरे इन लोगों के तो जिह्वा में कोड़ फूट जाना चाहिए, इनको नरक में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे, बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ रहा है, ये लोग मुक्ति कैसे प्राप्त किए? एतद् भ्राम्यति मे बुद्धि, हे नारद जी मेरा बुद्धि चकरा रहा है, कृपा करके इसको बतलाइए कि क्या कारण है कि यह दमघोष का पुत्र शिशुपाल मुक्ति को प्राप्त किया। यहीं से प्रश्न प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न से भगवान सबके समदर्शी हैं, वहां से प्रारंभ हुआ। तो उसी क्रम में नारद जी जब युधिष्ठिर महाराज से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो वे बतलाए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा, कि कैसे ये लोग भगवान के पार्षद थे पूर्व जन्म में, जिनका नाम था जय और विजय। भगवान के तब जाने में वैकुंठ लोक में कई एक गेट पार करना पड़ता है, और ये अंतिम गेट था जहां पर जय और विजय थे। संडे का दिन था, भगवान बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ में, आपस में बातें हो रही थी, संडे का छुट्टी का दिन था, ऑफिस का दिन नहीं था, तो ये लोग चतुष कुमार लोग चले गए भगवान से मिलने के लिए, हम भी हाजिरी लगाकर आते हैं। तो ये जय और विजय दोनों मना कर दिए, तो वहां पर कुछ वार्ता हो रही थी, तो लक्ष्मी जी बात कर रही थी, भगवान विष्णु सुन रहे थे। जब स्त्रियां एक बार बात करना शुरू करती है तो उनके पास बात करने के लिए बहुत चीज होता है, पुरुष बेचारे अनसा जाते हैं, शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, लेकिन स्त्रियां का मुंह बंद नहीं होता है, खूब बात करती रहती है। तो लक्ष्मी जी बात कर रही थी, भगवान सोचे अब क्या करूं, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी बाहर कुछ कोलाहल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बाहर, थोड़ा चलते हैं देखते हैं उधर क्या हो रहा है। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ में बाहर आए, तो यहां तक काम गड़बड़ हो गया था। काम गड़बड़ क्या हो गया था कि ये लोग जाने नहीं दे रहे थे, तो ये चतुष कुमार समक सनातन सनंदन सनत कुमार, उन लोगों को बड़ा दुख हुआ। वे लोग कहे कि नहीं हम जाना चाहते हैं, बोले आज नहीं जा सकते हैं, कभी जा सकते हैं, आज संडे का दिन है, आज भगवान के छुट्टी का दिन है, आज नहीं जा सकते हैं। तो खूब दोनों में झगड़ा हुआ, यानी मारपीट नहीं हुआ, केवल वर्बल झगड़ा हुआ, वार्ता हुआ। तो अंततः जब साधु लोग झगड़ा में ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जब तक झगड़ा होता है चले जाते हैं, ज्यादा गुस्सा होगा तो सरापरप दे देंगे, बस इतना ही करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। इसे सीखना चाहिए, भक्तों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो ये चतुष्कुमार लोग हाथ नहीं उठाए, चाहते तो हाथ उठा सकते थे, केवल श्राप दे दिए कि तुम लोग ऐसा व्यवहार करते हो द्वेषी के समान, जाओ तुम लोग भगवान का द्वेषी बन जाओ। जब श्राप दे दिए तब लक्ष्मी जी के साथ भगवान वहां पर आए, और भगवान आए तो ब्राह्मण देवताओं को देखकर चतुष्कुमारों को बड़े आश्चर्य में रहे, भगवान स्वयं बड़े गिल्टी फील कर रहे थे और चतुष्कुमारों से क्षमा याचना किए कि वास्तव में प्रभु, उन्होंने कहा कि प्रभु इसका वर्णन किया गया है पुराणों में कि वहां पर भगवान क्षमा याचना के चतुष्कुमारों से कहे, हे ब्राह्मण इन लोगों का दोष नहीं है, दोष मेरा है, यदि कोई सेवक गलती करता है तो सेवक का गलती उसमें नहीं होता है, गलती मालिक का होता है, यदि कोई पुत्र गलती करता है तो पुत्र गलती नहीं होता है उसमें, बाप का उसमें गलती होता है, इसलिए आप लोग ये मेरे सेवक हैं इनको क्षमा कर दें और हमें जो दंड देना है आप लोग दे सकते हैं। तो अब तो इन लोगों का लज्जा से सिर नीचे हो गया था, ऑलरेडी ऑलरेडी वो श्राप दे चुके थे जय और विजय को, अब झोली में कुछ था नहीं है? तो भगवान को प्रणाम करके और वहां से चल दिए। जय विजय चाहते तो चतुष्कुमारों को श्राप दे सकते थे, सक्षम थे, लेकिन आंतरिक लीला यह है कि जय विजय भगवान लीला करना चाहते थे। सतयुग से लेकर के त्रेता युग द्वापर युग तक भगवान लीला किए हैं, कलयुग में भगवान का कोई लीला अवतार नहीं है। भगवान छह प्रकार के अवतार लेते हैं, इसमें से एक है लीला अवतार। तो सतयुग से लेकर के द्वापर तक जितने अवतार हैं, 24 अवतार हैं, लीला अवतार की गणना में आते हैं। भगवान चेतन महापुरुष सनातन गोस्वामी से इन 24 अवतारों का वर्णन किए हैं लीला अवतार में, उसी में से भगवान नरसिंह देव का जो अवतार है वह भी लीला अवतार है। भगवान बुद्ध और कल्कि का जो अवतार है ये लीला अवतार नहीं है, दो ही कलयुग में अवतार है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो ये विभिन्न एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचिंत भेदाभेद तत्व का अवतार है, लीला महाप्रभु ने किया। भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ये लीला अवतार में नहीं आते हैं, लीला अवतार के भी भेद होते हैं। एक लीला अवतार वह होता है जो संपूर्ण होता है और एक पार्शियल होता है। जैसे भगवान राम भी लीला किए लेकिन पार्शियल लीला किए, कृष्ण लीला किए संपूर्ण रूप से, इसीलिए कहा गया है लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला पुरुषोत्तम है, राम नृसिंह वराह वामन ये सब लीला अवतार हैं, लीला करने लीला पुरुष हैं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम नहीं है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जब शूर्पणखा आई तो भगवान राम विवाह नहीं किए, यदि कृष्ण के पास आई होती तो भगवान तुरंत पंडित को बुला करके स्वाहा करा लेते, शादी कर लेते, कोई बात नहीं, वे लीला पुरुषोत्तम है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अब लीला अवतार में भी विभिन्न प्रकार के लीला अवतार होते हैं, भगवान राम भी लीला अवतार हैं, भगवान नरसिंह भी लीला अवतार हैं, लेकिन नरसिंह देव का ड्यूरेशन देखिए और भगवान राम का ड्यूरेशन देखिए, इन सब का वर्णन बृहद रूप से किया गया है शास्त्रों में, लीला अवतार का भी। कल्कि और बुद्ध ये सत्यावेशा अवतार हैं, लेकिन हैं जीव तत्व, ये लोग भी जीव तत्व हैं, विष्णु तत्व नहीं है, ये जीव तत्व हैं, इनमें शक्ति संचारित किया गया है भगवान बुद्ध में भी और कल्कि में, क्योंकि जितने भी जीव तत्व हैं वो शरीर छोड़ते हैं, जहां के विष्णु तत्व हैं वो सशरीर जाते हैं। भगवान श्रीराम, भगवान श्रीराम सरयू में प्रवेश किए, भगवान नरसिंह देव चले गए अपने शरीर के साथ में, वराह वामन शरीर नहीं त्यागे, लेकिन कल्कि का वर्णन किया गया है वो शरीर त्यागेंगे भी, बुद्ध का वो शरीर त्यागे, ये वर्णन किया गया है। तो ये सत्यावेशा बता रहे हैं लेकिन हैं जीव तत्व, तो तत्व बताना जरूरी है भगवान नरसिंह देव के विषय में। तो भगवान उस दिन भगवान बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ में, और हां जब बाहर जब चले गए चतुष्कुमार लोग चले गए, नहीं मैं कह रहा था कि वे चाहते तो श्राप दे सकते थे जय और विजय, लेकिन नहीं, भगवान लीला करने आने वाले थे तो लीला में सहायक बनने के लिए तैयार हो गए। यही है भक्तों का गुण, भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ भी वे करने के लिए तैयार रहते हैं। नारायण परा सर्वे न कुत सस्त न विभति, स्वर्ग अपवर्ग नरक कहीं भी जाना हो कोई तकलीफ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में यही कहे ना, क्या कहे हैं कि चाहे आप मुझे इम्ब्रेस करो चाहे ब्रोकन हार्ट बनाओ, मैं आपका हूं। आशिष वापाद्रताम विनस्माम अदर्शनम मरमताम करो तु वा यथा तथा वा विद्या तुलम बडो मत प्राणस्तु स एव नापर, दूसरा कोई नहीं है प्रभु आप ही हो। तो भगवान अब फैसला करने आए, देखें इन लोगों का मुंह लटका हुआ था जय विजय का, जब श्राप प्राप्त कर लिए थे तो समझ गए ना कि इसका मतलब क्या होगा, वो समझ गए कि अब भगवान का भगवान से द्वेष करना पड़ेगा, यानी इस स्थान को ये पोस्ट खाली करना पड़ेगा। हम लोगों को टेम्पल कमांडर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है बाद में खाली करना पड़ता है, कितना दुख होता है कि नहीं। इन लोगों का डायरेक्ट सेवा था ऊपर है, वो तो छोड़ो अपना संजय इधर है ना, रमेश और संजय कितने दिन से है, इनको यहां से हटाओ बाहर हमारे पास है, प्रभु जी बोल रहे मंदिर में अच्छा लगता है ना, सिक्योरिटी भी यहां से नहीं जाना चाहते हैं, तो जय विजय बेचारे क्यों जाना चाहेंगे। उन लोग बड़ा दुख लग रहा था लेकिन मुंह लटकाए हुए थे, समझ गए थे गलती तो हो गई है। तो भगवान संतावना दिए, कहे पुत्रों देखो दो चीज है, ये लोग श्राप दिए हैं तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इनके श्राप को टालना मेरे ही बस की बात नहीं है, तो तुम लोग या तो 7 जन्म तक विमुख होकर के संसारिक बन कर करके संसार में विचरण करो, जैसे संसारिक जैसे हम लोग हैं संसार में, यानी इंद्रिय तृप्ति में मेरा विस्मृति बन कर करके दोनों, हालांकि उन लोगों को भगवान के विमुख होना था, तो जो भगवान को भूल गए हैं बिल्कुल वो भी विमुख हैं भगवान के, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं जिनके लिए इंद्रिय तृप्ति प्रधान है वो भी भगवान के विमुख हैं, लेकिन जो भगवान का चिंतन करते हुए अपने को भगवान मानते हैं वो भी भगवान के विमुख हैं। तो भगवान ने कहा कि दो चीज है, एक मेरे विस्मृति के साथ में 7 जन्म तक तुम संसार में रहो, नहीं सॉरी 7 जन्म नहीं 1 जन्म, मेरे विस्मृति के साथ में 1 जन्म तक संसार में रहो, या मेरे स्मृति के साथ में 3 जन्म तक संसार में रहो, लेकिन मेरा द्वेषी बनकर ही रहना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इन लोगों ने सोचा भगवान का विस्मृति, 1 जन्म भगवान का विस्मृति, नहीं 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 वह संभव नहीं है, हम भगवान से विस्मृत होकर के नहीं रहना चाहते हैं, हम भगवान का स्मृति करते हुए रहना चाहते हैं। अरे तो भगवान यहां पर 3 जन्म कह रहे हैं, 3 का यदि 1000 जन्म मिले भगवान से विमुख रहने का लेकिन भगवान का स्मृति बना रहे तो वह बड़ा ही सुंदर बात है। इसी क्रम में नारद जी बतलाए हैं कि भगवान का स्मृति करते हुए जो द्वेष भाव से रहते हैं उनके विषय में, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कश्चिन् इच्छते पृथक्, ऐसे वर्णन किए हैं। हाँ अंतिम श्लोक, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यतन्मयतात्मियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चितामति, नारद जी कह रहे हैं क्या सुंदर कंक्लूजन दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार भगवान का बैरी बनकर के रखना बड़ा अच्छा है, भगवान से द्वेष कर करके रहना अच्छा है, भगवान का द्वेषी बनकर के रहना अच्छा है, क्योंकि भगवान से द्वेष करने में जितना भगवान का चिंतन होता है, जितना भगवान का स्मरण होता है, उतना भक्ति से नहीं होता है। भक्ति से प्रसाद खाकर के नींद आती है, लेकिन जो बैर भाव में है उसे नींद नहीं आती है। वो प्रसाद पानी पीता है, वहां विष्णु, विष्णु यहां पर पानी भी नहीं पीता है, पानी भी नहीं पीता, सोने था विष्णु वहां पर सोता भी नहीं है, खाने था विष्णु वहां पर। अपने को तो प्रहादा माल में अभी अभी तो फास्टिंग है, शाम को देखो कितना धक्का मुक्का लगेगा वहां पर है? तो जो बैरानुबंधन है, जो बैर भाव में बंधन जिसका हो चुका है, अनुबंधन निकृष्ट रूपेण से जो बंधित हो चुका है, प्रबंधन कहते यथा बैरानुबंधन मर्त्य तत मयताम इयात, जितना वो तन्मयता के साथ में भगवान का चिंतन करता है, न तथा भक्ति योगे न, भक्ति योग में उतना वो चिंतन नहीं कर पाता है। हम लोग 16 माला जप कर लिए, माला उधर रख दिए, माला मेरा कहां है, मैं रखा हूं इधर, ढोते भी नहीं रख देते हैं, हां प्रभु जी 16 माला जो हो गया, पता नहीं मृत्यु देवी कब आ जाएगी हमारे पास बिना नोटिस दिए हुए। लेकिन जो बैरानुबंध है ना, है मृत्यु आएगी तो ही बोलो विष्णु भेजा है, विष्णु का स्मरण करेंगे। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि बैर भाव से, तो भगवान वही ऑप्शन दिए इन दो द्वारपालों को, जय और विजय को, भैया डिसाइड करो, तीन जन्म मेरे विमुख होकर के रहना या एक जन्म। अंतर इतना ही है कि तीन जन्म में मेरा स्मरण होता रहेगा, जहां कि एक जन्म में मेरा स्मरण नहीं होगा। तो भगवान के शरण में आ गए और कहे नहीं प्रभु, हम तीन जन्म लेना स्वीकार करते हैं। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि, भक्तों को यही कामना होती है, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे। महाप्रभु कहते एक ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक अनेक जन्म लेना पड़े, मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का स्मरण, यही है भक्ति का सार, यही है भक्ति का अल्टीमेट रिजल्ट। सत्यम अस्मर्तव्यम विष्णु, विस्मर्तव्यम न कुचित, नित्य निरंतर विष्णु का स्मरण करें और एक सेकेंड के लिए भगवान को हम ना भूलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर हरि का कीर्तन करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये चतुर्थ जय भी, ये बड़े चतुर थे, चतुराई अपना हम लोग तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं एक जन्म और तीन जन्म, चलो एक जन्म जल्दी आ जाएंगे, एक जन्म लेते हैं, लेकिन वो एक जन्म भगवान का विस्मरण होने से बहुत भारी पड़ जाएगा, कि कर्म फल छोड़ेगा नहीं, कर्म फल नहीं छोड़ेगा, तो एक जन्म मल्टीप्लाई होते होते पता नहीं कितना जन्म हो जाएगा, अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल तक हम भगवान के विस्मरण में बने रहेंगे। लेकिन तीन जन्म मतलब तीन जन्म स्मरण होता रहेगा, और जब स्मरण होता रहेगा, एक आचार्य कहते हैं कि ये जय और विजय जन्म लिए तो इन लोगों पर कर्म फल नहीं बना, कभी कर्म फल नहीं बना, क्योंकि भगवान का ये भजन कर रहे थे, प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे, प्रतिकूल भाव से कर रहे थे। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म फल को कौन खत्म करता है, भक्ति, किंतु च भक्ति भांजा, किंतु च च मतलब निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। निर्दहति मतलब जला डालता है, जलाकर राख कर देता है। किंतु च और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, वह क्या है? भक्ति भाजाम, भगवान का प्रेम से भजन करना। तो ये लोग भजन कर रहे थे भले प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से भजन करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये लोग प्रतिकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से लेकिन भजन कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों का कर्म फल नहीं बन रहा था। यदि कर्म फल बनता तो तीन जन्म नहीं, कई एक जन्म। हिरण्यकश्यप जैसा अत्याचार कर रहा था, हिरण्याक्ष जैसा अत्याचार कर रहा था, देवता लोग भी इनके आंगन में झाड़ू मारते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सब नौकर थे इन लोगों के, याद रखो। और अत्याचार, क्या क्या अत्याचार नहीं करते थे ये लोग। नरक में जाना पड़ता, लेकिन नहीं, भगवान का चिंतन का स्मरण करते थे, इसीलिए इन पर कर्म फल कभी नहीं बना। और तीन जन्म भगवान ने कहा था, वे स्वीकार किए थे। तो इस प्रकार से प्रथम जन्म में ये हुए, इसका विशद वर्णन तीसरे स्कंद में किया गया है। प्रथम जन्म में हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में हुए ये लोग रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और दंतवक्र, जिनका भगवान मुक्ति दिए इन लोगों का वध कर करके। प्रथम जन्म में हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष सिक्योरिटी रमेश एक आदमी इधर आ जाओ, लोग बात कर रहे हैं। हिरण्याक्ष बहुत बलवान था, अपना गदा लेकर के पूरे विश्व में परिभ्रमण कर करके, पूरे लोक में परिभ्रमण कर करके, पृथ्वी लोकों में से एक लोक है पृथ्वी लोक, ऐसे अनेक लोक है। वो पृथ्वी पर आया तो पैर से ऐसे धक्का मारा कि पृथ्वी नीचे चली गई, यानी पृथ्वी को चुरा दिया। तो भगवान वराह रूप में आकर के और पृथ्वी का उद्धार किए, उसे मार करके। दूसरे अध्याय में वर्णन होता है, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप को बहुत कोप हुआ, बहुत गुस्सा आई, और उसके पास दो काम था। एक, हिरण्याक्ष की पत्नी, उसका पुत्र और माता दीति, ये लोग बड़े दुखी थे, उन लोगों को संतावना देना, और दूसरा विष्णु को खत्म करना, दो काम था। तो उसने पहले घर में संतावना दिया, घर को शांत रखना बहुत जरूरी है कोई काम करने से पहले, तो घर में संतावना दिया और भगवत गीता का पूरा उपदेश दिया। ये पहले के प्रमाणित करता है कि पहले के असुर लोग भी ऑर्डिनरी नहीं थे। आजकल के बड़े बड़े पीएचडी लोग भी देह और आत्मा के विषय में नहीं जानते कि आत्मा क्या है और देह क्या है। बड़े बड़े लोग जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं, वो भी नहीं जानते हैं, और पहले के असुर लोग भी इस बात को जानते थे। तो हिरण्यकश्यप उन लोगों को अच्छा तरह से गीता का उपदेश दिया। उसी क्रम में उसने नरेश का कथा बताया कि कैसे एक राजा थे, और क्या नाम था उसने नरेश का नाम क्या था जो मारे गए थे लड़ाई के मैदान में? हां, सुजग। तो कैसे वे मारे गए थे और सब लोग रो रहे थे, वहां जमराज जी आकर के संतावना दिए, बतला, सब लोग रो रहे थे। तो जमराज जी आए, देख शाम का समय हो गया, अब ले जाने का आ गया था समय, तो कहे आप लोग क्यों रो रहे हो सब लोग? तो राजा के पिता जीवित थे, बाहर आए कि बेटा तू नहीं समझ पाएगा, जाओ क्यों रो रहे हैं। यमराज जी ने कहा, छोटा बाला का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा जो समझता है वो नहीं रोता है, जो नहीं समझता वही रोता है। अब तो ये छोटा मुंह बड़ा बात हो गया, सब लोगों का आंसू खत्म, सब देखने लगे। अरे कौन चला गया है? राजा साहब। राजा साहब चले गए, इतने पड़े हुए हैं राजा साहब। राजा साहब नहीं है, ये तो इनका शरीर है। कौन चला गया? तो इनकी आत्मा चली गई। आत्मा चली गई? आपने कभी देखा था आत्मा को? जानते हो? अरे आप तो शरीर को देखे थे, आप शरीर के विषय में जानते हो, आत्मा के विषय में जानते नहीं हो, फिर रोने का क्यों? तो बहुत सुंदर उपदेश देकर, संतावना देकर के, और बाद में उसके अपने जितने चिले चपाटी थे, चमचे, सबको कहा कि देखो अब क्या करना है। ये देवता लोग, विष्णु ऐसे अच्छा आदमी है, खराब नहीं है, लेकिन बड़ा जल्दी पिघल जाता है। ये देवता लोग जाकर के उसका दिमाग खराब कर देते हैं, वो मेरे भाई को मार दिया, अभी देवताओं को मारना जरूरी है। देवता लोग अमर हैं, इसलिए हमको भी अमर बनना चाहिए। मैं जा रहा हूं तपस्या करने, बेटा तुम लोग सब राजभाग देखना। अब हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने के लिए। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया गया है, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो उसके तपस्या का वर्णन किया गया है, मद्राचल के गुफाओं में जाकर के तपस्या करने लगा, जैसे ध्रुव महाराज तपस्या करते थे वैसे ये भी तपस्या करने लगा। ये अपने अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था, सांस लेना तक छोड़ दिया था, उसके शरीर जो था वो दीमक का घर बन गया था, और उसके तेज से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। जब देवताओं पर हीट हुआ, जब गर्मी, सब लोग आश्चर्यचकित, कहां से हुआ, कहां से हुआ, पता चला भागते भागते सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो ये स्वर्ग लोक जल करके राख हो जाएगा, हम लोगों के लिए रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा। तो ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति और एकाद दो और प्रजापतियों को लेकर के और वहां पर आए, अपने कमंडलों से जल का छिड़काव किए, तो हिरण्यकश्यपु का बहुत सुंदर स्वरूप वहां पर उपस्थित हुआ। और बाद में हिरण्यकश्यपु सष्टांग दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से वह वर मांगा, सीधे वर मांग लिया कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहे कि अरे मेरा ही कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें मैं अमर होने कैसे वरदान दे सकता हूं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये साइंटिस्ट लोग लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लोग मूर्ख बन जाते हैं। ये साइंटिस्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा कुछ शोध करेंगे जिससे किसी को मरना ना पड़े, किसी को बीमारी ना हो। प्रभुपाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यपु सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, बिना खाए पिए तपस्या कर लिया था, उसको भी मरना पड़ा, तो ये साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे? और हम लोग मूर्ख बनकर, हां साइंसिस साइंसिस बहुत बड़ा भगवान आजकल के हैं, हमको बड़ा मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते। ये शास्त्र कहता है सबको मरना है, जो यहां पर आया पुनरपि जन्म पुनरपि मरनम पुनरपि जननी जठरे सैनम, जो भी आया उसको जाना पड़ेगा, इसीलिए भाव है। तो हिरण्यकश्यपु चलाक था, तो सर ठीक है ऐसे नहीं तो शॉर्टकट, वो शॉर्टकट मांगा वरदान कि दिन में न मरूं रात में न मरूं, मनुष्य मुझे कोई भय नहीं है और किसी पशु से मुझे कोई भय नहीं है, तो न मनुष्य से बनूं न पशु से बनूं, न आकाश में मरूं प्लेन क्रैश ना हो, न पताल में मरूं, क्योंकि उनका राज पताल तक था, पताल भी जा सकते थे, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, यानी चहुओर से वो अपने को सुरक्षित करने का प्लान कर लिया, अमर बनने का प्लान। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मा जी निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। जब हम भगवान का चिंतन करते हुए कोई काम करेंगे तो काम बड़ा अच्छा होता है। जब हम अपने बुद्धि से कुछ काम करेंगे ना, अपने को चालाक बन करके, तो जरूर गड़बड़ होगा। इसलिए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना किए थे कि मुझे कभी अहंकार ना आ जाए सृष्टि में। इसलिए ब्रह्मा जी का जितना भी सृष्टि है ये परफेक्ट सृष्टि है, क्योंकि भगवान का चिंतन करते हुए उन्होंने सृष्टि किया है। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग जो भी सेवा करते हैं भगवान का चिंतन करते हुए यदि सेवा करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब वो परफेक्ट होगा। चाहे मंदिर में झाड़ू लगाना हो, चाहे भगवान के लिए माला बनाना हो, चाहे भगवान के लिए भोजन प्रसाद बनाना हो, भोग बनाना हो, ये भगवान का चिंतन करते हुए करेंगे तो फर्स्ट क्लास का बनेगा। लेकिन भगवान में मन नहीं रहेगा तो खीर में शुगर के बदले में नमक डाल देंगे, क्योंकि मन वहां पर नहीं, चिंतन नहीं है। तो भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का सेवा करना चाहिए, सीखना चाहिए इसे। तो ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करते हुए आशीर्वाद दे दिए, और जब चिंतन करते हुए कोई काम हम करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाती है उस काम को फर्स्ट क्लास बनाने का। प्रभुपाद जी अमेरिका गए भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान प्रभुपाद जी के वाणियों में देखिए कहते हैं, भक्ति नाए वेद नाए, नाम खूब बड़ो, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। हे प्रभु, आप मुझे लाए हैं यहां पर, जब लाए हैं नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते, आप नचाओ मुझे जब लाए हो तो। और भगवान का चिंतन प्रभुपाद कर रहे थे, इसलिए आप देख सकते हो कितना सुंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट का स्थापना हुआ। यह स्थापना भगवान किए, प्रभुपाद तो केवल माध्यम थे। तो भगवान माध्यम बनाते हैं। पप्पू हरि बोल, क्या हो रहा है, ऐसे कर रहा है, प्रसाद खाना है यहां तक क्या, अभी बाद में शाम को। तो चिंतन करते हुए यहां पर ब्रह्मा जी चिंतन करते हुए आशीर्वाद दिए। किसको आना पड़ा रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी आए थे क्या वहां रक्षा करने के लिए प्रहलाद का, कौन आया था, भगवान। हालांकि बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी कहा, शिव जी भी वहीं पर थे, कहा ऐसे उटपटांग आप लोग बरदान मत दिया करो, परेशानी मुझे होती बार में, कहे कैसा उटपटांग बरदान मत, हर सोच के बरदान दिया करो। तो चिंतन करते हुए एनीवे जब आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अब हिरण्यकश्यपु टेरर बना और आकर के टेररराइज करने लगा। सब देवताओं पर बड़ी परेशानी थी, एक के बाद एक। बेचारे जब तपस्या कर रहा था तो जल रहे थे, वहां से छूट गए ब्रह्मा जी कृपा से। अब टेररराइज करने लगा कि उसका अपना नौकर बना लिया। कहा जाता है कि इंद्र वर्षा के इंचार्ज थे, वायु देवता झाड़ू लगाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सब 33 करोड़ देवता हिरण्यकश्यपु के यहां नौकरी करते थे, मतलब स्वर्ग लोक में ही। हिरण्यकश्यपु स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया था ना, तो वहां स्वर्ग का राजा बन गया था। यहां वर्णन किया गया भागवतम में कि कैसे स्वर्ग का वो सुख भोग रहा था, और ये लोग नौकरी कर रहे थे। बाद में सब लोग त्राहिमाम करते हुए अब ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, सोचे कि ब्रह्मा जी के पास गए लेकिन पूरा काम नहीं हुआ, आधा काम हुआ। अब इस बार ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु आकर के देवताओं को संतावना दिए और कहे कि ये अपने कर्म से अपने मृत्यु के नजदीक जा रहा है, लेकिन अंतिम कर्म जब करेगा अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद पर जब अत्याचार करेगा तो वही उसके विनाश का कारण होगा। तो इधर हिरण्यकश्यप टेरराइज कर रहा था, उधर प्रहलाद जी अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अच्छे बच्चे बन रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी जन्मजात भक्त थे, जन्म से ही भक्त थे, मां के गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान नारद जी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। हिरण्यकश्यप को चिढ़ आती थी कभी कभी, जब हरि हरि करते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, तो हिरण्यकश्यप को चिढ़ आती थी। कयाधु बेचारी संतावना देती थी कि बच्चा है कोई बात नहीं, हम इतना दिन तक नारद जी के आश्रम में थे, वहां सुन लिया है, तो बचपन का जो सीखा हुआ होता है वो भूलता नहीं है, है ना। आज भी हम लोग याद करें अपने बचपन का, किसको हम मारे थे बचपन में झापड़ अभी याद है, किसका हम सामान चुराए थे अभी याद है हम लोगों को, क्या गलती किए थे, क्या सही काम किए थे, सब कुछ बचपन। बचपन बड़ा सुंदर जीवन है जिसको लोग याद करते हैं। आनंद केवल बचपन में आता है, जवानी का आनंद क्षण भंगुर होता है और बुढ़ापा में तो केवल रोना पड़ता है। तो बचपन ही एक है जहां पर आनंद का अनुभूति होता है। तो कयाधु समझाई कि नारद जी के आश्रम में था, सीख लिया है, क्षमा कर दीजिए। हिरण्यकश्यप जब देखा कि प्रहलाद थोड़ा बड़ा हो रहे हैं तो इनका ब्रेन वॉशिंग करना जरूरी है, तो वे स्कूल भेजे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि बाप मां अपने पुत्रों के बच्चों के शत्रु होते हैं यदि अपने बच्चों को विद्या न दें। विद्या देना, हिरण्यकश्यप असुर होकर के भी जानता था कि बच्चों को विद्या देना चाहिए। वहां भी गुरुकुल था, भले असुरों का गुरुकुल था, शुक्राचार्य उसके फाउंडर आचार्य थे गुरुकुल के, और उनके दो पुत्र संड और अमर वो गुरुकुल चलाते थे, जहां पर ये असुर बालक लोग जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो वहां पर प्रहलाद जी गए पढ़ने के लिए, राजा के बेटा थे, संस्कार था, नारद जी के आश्रम से सब सीखे थे। भक्त होते हैं वे सबके प्रिय होते हैं, जो बच्चे अभी भी देखते हैं जो डिवोटी के बच्चे होते हैं, उड़पुर तिलंग करते हैं और कंठी धारण करते हैं माला लेकर के, बड़े बड़े कहते हैं कितना अच्छा लगता है बच्चा है? जो भक्त होते हैं वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में ही अच्छे लगते हैं। तो प्रहलाद जी देखने में अच्छे थे, उनका आचार व्यवहार भी बड़ा अच्छा था, गुरुओं के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे, पैर छूते थे। हम लोग भी पढ़े हैं बचपन में गुरु को रियली में गुरु मानते थे अपने टीचर को, आजकल के बच्चे जैसे नहीं, हम लोग पैर छूते थे, डरते भी थे। आजकल के बच्चे डरते नहीं है, मैं सुना कि पाकिस्तान में वो रिवाल्वर लेकर के पढ़ने जाते हैं बच्चे, सर्वम बहु बोल रहे, पता नहीं कितना सही बात है, रिवाल्वर लेकर पढ़ने जाते। अमेरिका में तो है, ये तो खुला है, वहां कोई कुछ बोल नहीं सकता है। अब वही महामारी मलेरिया इंडिया में आ गया है, इंडिया में स्कूल के बच्चे को आप कुछ बोल नहीं सकते हो, बोलोगे तो चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा। पहले हम कितना मार खाए, इधर भी मार खाए, इधर भी मार खाए, है ना, टीचर लोग छड़ी से मारते थे। प्रभुपाद जी भी जब गुरुकुल खोले तो प्रभुपाद जी का फोटो देखो, छड़ी लिए हैं प्रभुपाद जी हाथ में, है? देखा आपने प्रभुपाद जी के हाथ में छड़ी, डालस में जो गुरुकुल खुला था प्रभुपाद जी हाथ में छड़ी लेकर के पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने का तरीका ये था, छड़ी दंड, मारने का नहीं, कल दिखाने का, मारने का नहीं, कल दिखाने का। कभी कभी मार भी खाते थे, मुझे याद है हम छोटे बच्चे थे, पांच क्लास अच्छे में पढ़ रहे थे, हमारा एक मित्र था, तो हमारा हेडमास्टर आया, उनका नाम था राजा सिंह, वो बस से आते थे, सब भक्त डर जाते थे। उन्होंने कहा कि पानी लाओ, तो मैंने उनसे कहा तुम पानी लाओ, तुमको बोले हैं, वो कहा तुम पानी लाओ, हम में से तो कोई पानी उनको नहीं लेकर गया। हम दोनों को बुलाए, हम दोनों का हाथ बांध करके, हमारे स्कूल में नीम का एक पेड़ था, बेंच पर खड़ा करा करके हाथ बांध कर करके और नीम के पेड़ में लटका करके और बेंच खींच दिए, वहां से झूलते रहो नीम के पेड़ में। तो पहले बड़ा डर था, पहले वास्तव में गुरुओं का सम्मान होता था, पूजा होता था गुरुओं का, शनिवार को जाकर के, मुझे बचपन याद आ रहा है इसलिए बोलता, आप लोगों को भी होगा, शनिवार जाते थे स्कूल का गाय के गोबर से लिपाई करते थे, घर से चावल लाकर खिचड़ी बनाते थे, सब लोग मिलकर खाते थे। कितने लोग किए हैं हाथ उठाओ, तो कोई किया ऐसा? चलो कुछ लोग तो याद है, ऐसा करते थे, बड़ा आनंद उसमें। आजकल वो सब नहीं है। एनीवे, तो प्रहलाद महाराज बड़े सुशील थे, शीलवान थे, शीलवान गुणी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, सबको बड़े आदरणीय होते हैं। तो प्रहलाद का गुण जैसे सुगंधित लता होता है, चाहे चमेली हो चाहे मोगरा हो, तो आप उसके नजदीक से जाएंगे तो उसका सुगंध आते ही पता चलेगा, हाँ यहां मोगरा है, है? सुगंधित। चाहे फल वाला वृक्ष हो, जैसे आम का वृक्ष आज से 3 महीना पहले जब मंजरी उसमें लगा हुआ था, कितना सुगंध आता है, दूर से ही वायु उसके अरोमा को खींचता है और वो फैलता है दूर तक। भगवान और भगवान के गुणों का अरोमा बहुत दूर तक फैलता है। यहां तक वर्णन किया गया कि पुतना जब मारी गई थी भगवान के हाथ से, तो उसका जब शरीर जलाया जाता था तो 10 योजन तक उसका सुगंध जा रहा था। 10 योजन का मतलब कितना हो गया? 30 कोस ना, 60 माइल। 60 माइल तक सुगंध जा रहा था। वैसे ही भगवान ऋषभ देव जब पैखाना करते थे तो उनके पैखाना से इतना सुगंध ज्यादा था कि लोग इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे। कोई सूंघ रहा है, यहां पर नहीं है, उस समय था। तो वैसे ही भगवान और भगवान के भक्तों का गुण अपने आप, हम लोग डेली गाते हैं, ऐसे गाय कैसे श्री गुरु चरण पद्म में अंतिम श्लोक, हा प्रभु कर दया त्रिभुवन आए, तीनों भुवन में उसका गुणगान होता है। तो प्रहलाद जी का गुणगान हो रहा था तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ सुन करके कि मेरे बेटा का इतना गुणगान हो रहा है, मतलब बेटा बेटा फर्स्ट क्लास अभी है। तो बुलाए एक दिन और बड़े प्रेम से जंघे पर बैठा करके और पूछे कि बेटा बताओ तू सबसे अच्छा चीज क्या सीखा है अपने गुरुकुल में, बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्धि असत्ग्रहाय हित्वा तपातम गृह अंधकूपम वनम गतो धरिमाश्रयेत। कहते हैं पिताजी संसार में सब लोग दुखी हैं, आप भी उसी में से हैं। कहते हैं असुर वर्ज दे ही नाम, असुरों में सर्वश्रेष्ठ, हे असुर राज संसार में सब लोग दुखी हैं, क्यों? कुंती वाला कहते अविद्या। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? सदा सम उद्विग्न धिया, सदा मतलब कॉन्स्टेंटली, सम मतलब बराबर, बराबर का क्या अंग्रेजी होगा? इक्वली और ऑलवेज, 24 आवर अ डे, एक ही मात्रा में, सदा सम उद्विग्न, उद्विग्न मतलब डिस्टर्ब, धिया मतलब मन और बुद्धि। व्यक्ति का मन हमेशा 24 आवर अ डे डिस्टर्ब रहता है, क्यों? असत ग्रहाय, असत वस्तु को ग्रहण करने के चलते। और माता कुंती कहते अविद्या, अविद्या क्या है? अपने को देह मानना। असत क्या है? अपने को देह मानना। हम अपने को देह मानते हैं और देह से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं, इसलिए ये देह ही, मैथमेटिक्स में जब शुरू में गलती होता है तो उत्तर गलत ही आएगा। तो वैसे देह को अपना मानना, जब अविद्या के गाड़ी में चढ़े हैं तो सब कुछ अविद्या ही होगा और यह दुख का कारण है, मन के डिस्टर्बेंस कारण है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी संसार में सब लोग दुखी हैं, आप भी उसी में दुखी हैं। तो अच्छा बेटा तो बताओ तो सुख का कारण क्या है? प्रहलाद जी हंस रहे थे, अरे आप इतने बड़े हो हमसे पूछ रहे हैं सुख का कारण क्या है? ठीक है पूछ रहे तो बता रहा हूं। कहते हैं देखो घर गृहस्थी बड़ा खतरनाक चीज है, ये घर गृहस्थी में रहने से बड़ा दुख होता है, इसे कहा गया है अंधकूप, दो प्रकार का कुआं होता है, एक कुआं जिसमें पानी हो और एक में जिसमें पानी नहीं होता है, उसमें घास पत्ते मच्छर सांप बिच्छू सब पड़े रहते हैं, वो अंधकूप कहलाता है, अंधा कुआं, अंधेरा कुआं। तो कहते हैं जिस घर गृहस्थी में भजन ना हो वह घर गृहस्थी कैसा है, अंधकूप के समान है। जहां पर मैं और मेरा विराजमान हो जिस घर में, वह घर अंधकूप है। अच्छा तो क्या करना चाहिए, कहते करना क्या चाहिए, छोड़ दीजिए जल्दी, हित्वात पातम गृह अंधकूपम। तो जाए कहां घर छोड़ करके, कहां जाएंगे, तो हरे कृष्ण मंदिर में आ जाओ। बनम गतो यद हद्रिमाश्रयेत, जंगल में जाओ। तो मान लो जंगल में क्या करेंगे, क्या पशु बनने जाना है, क्या बंदर बनने के जंगल में करके, नहीं नहीं, हरिमाश्रयेत, हरि का शरण ग्रहण करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ज्यों ही प्रहलाद के मुख से हरिमाश्रयेत शब्द सुना हिरण्यकश्यप, अब तक शांति से सुन रहा था, प्रहलाद को जंघे पर बैठाया था शांति से, लेकिन ज्यों ही हरि का नाम लिए मानो प्रहलाद जी का पूरा शरीर सरचार्ज हो गया हरि के करंट से, हिरण्यकश्यप को करंट मार दिया, तुरंत जलने लगा जंघा, उठाकर प्रहलाद को फेंक दिया नीचे और बुलाया चंडवर्मन को, ए तू क्या सिखाया इन लोगों को, ये क्या बकवास करता है बेटा, ले जाओ ठीक से पढ़ा कर लेना इस बार। बेचारे लेकर गए, फिर बड़ा पुचकार करके बड़े प्रेम से, देखो बच्चों को डांटेंगे तो आपको नहीं पढ़ेंगे, बड़ा प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने का प्रयास किए, खूब पढ़ाए, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के विषय में पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को थोड़ा भी उसमें आनंद नहीं आ रहा। लेकिन प्रहलाद जी थे इंटेलिजेंट, जो बात ये लोग पढ़ाते थे सब पढ़ लेते थे, सब याद कर लेते थे और एज इट इज रिपीट भी कर देते थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। वो जानते थे कि ये असार है, उनका मन तो केवल हरि भजन में था, तो बाह्य दृष्टि से स्वीकार करते थे लेकिन दिल से उसे सत्य नहीं मानते थे। तो प्रहलाद बड़े अच्छे तरह से आचरण कर रहे थे, तो अब स्वयं एक गुरु के जो दो छोकड़े थे शुक्राचार्य के संघ कंवर, वो बड़े खुश हुए, सोचे कि इस बार हमको पुरस्कार मिलेगा, हम अच्छा सिखा दिए हैं, अभी चतुष्पुर पुरस्कार सिखा दिए हैं। ये लोग प्रहलाद जी को लेकर के आए, कहे कि महाराज महाराज अब प्रहलाद बिल्कुल सुधर गया है, आपने जो कहा था वही हम सिखाए हैं और वही सिखा है, क्योंकि रिपीट करते थे वही चतुष्पुर पुरस्कार। फिर हिरण्यकश्यप जंगे पर बैठाया प्रहलाद जी को, बड़ा प्रेम से पूछ रहा था, प्रेम से पूछा कि बेटा प्रहलाद अब बताओ कि इस बार तुम बताओ नया चीज, अच्छा चीज क्या सीखा है। आजकल बच्चे जब घर आते हैं बाप मां पूछते हैं कभी कभी कि बेटा बताओ स्कूल में क्या सीखा है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यही ना, ये बोलते हैं ना आजकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं। प्रहलाद जी यह बात नहीं बोले, प्रहलाद जी ज्यों ही वो पूछा गया कि तुम क्या सीखे हो, तो प्रहलाद जी तुरंत बताना शुरू किए, नवधा भक्ति का वर्णन शुरू कर दिए। हालांकि इसके पहले नवधा भक्ति का वर्णन करना शुरू किए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पा सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्य महात्म्य। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, अब लगा गाली देने गुरु के पुत्रों को कि तुम बदमाश हो, नमक हराम हो, तुम लोगों का फीस तुम लोग महीना मैं देता हूं, और तुम लोग हरे कृष्ण वाले आकर के हमारे गुरु के बेटे के भेष में, ब्राह्मण के भेष में तुम लोग हमारे बेटे को विष्णु का ज्ञान दे रहे हो, ये सब बहुत डांटा, बहुत डांटा। ये लोग कांप रहे थे और कांपते कांपते कह रहे थे कि नहीं महाराज, न मत्त प्रणीत न परत प्रणीत, यह जो बात है हम लोगों ने नहीं सिखाया है, कहते हैं न मत्ता प्रणीतम न पर अप्रणीतम, न हमने सिखाया है तो कहते ठीक है तुमने नहीं सिखाया है, कोई हरे कृष्ण वाला हो गया कैंपस प्रीचिंग वाला आ गया होगा, कहते न पर अप्रणीत, दूसरा भी नहीं सिखाया है। जब कोई सिखाया नहीं है तो इसे ऐसा ज्ञान कहां दिया गया, हरे कृष्ण वाला कैसे बन गया? कहते हे इंद्र शत्रु सुतो बदत्तेश तव इंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु हे महाराज हिरण्यकश्यपु, आपका बेटा जो बात कह रहा है न तो हमने सिखाया है न कोई दूसरा सिखाया है। तो मानो हिरण्यकश्यपु जी तब तुम लोगों ने नहीं सिखाया है तो तू बताओ ये कहां से इसको ऐसा ज्ञान आ गया है, ये कहां सीख गया? बात सही कह रहे थे, इन लोगों के पास हरे कृष्ण का बुद्धि कहां है, फिलोसफी कहां जानते हैं हरे कृष्ण का, ये कहां से सिखा सकते हैं, इन लोगों के बस का बात नहीं है। और न पर प्रणीत, वही बात सही है, सिक्योरिटी इतना टाइट था कि कोई हरे कृष्ण डिवोटी अंदर नहीं जा सकता था। तो बात सही है बोले कि दूसरा भी कोई नहीं आया है, ठीक है तू लोग नहीं सिखाया दूसरा नहीं सिखा बदमाश कहीं का, बताओ ये कहां से सीख गया? तो कहते न सर्गी यम मतिरस्य राजन, हे राजन नियत क्षमन्यु कददा सस्मान, हे राजन अपने क्रोध को त्याग दे। और देखिए हम लोगों ने इसे नहीं सिखाया है, दूसरा भी कोई नहीं सिखाया है, ये जन्म से ही इसका ऐसा बुद्धि है, जन्म से ही सीख लिया है। तो कृष्ण के भक्त निर्भीक होते हैं, डरते नहीं हैं। तो उनके सामने ही प्रहलाद जी बोलना शुरू किए कि पिताजी हमारे गुरुओं को क्यों डांट रहे हैं, ये बेचारे सही बोल रहे हैं, इन लोगों को ऐसा ज्ञान कहां से आएगा, इन लोग कहां से ऐसा ज्ञान आएगा? कहते मति न कृष्णे परत असतो वा मिथो अभिपद्य गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणा नाम। ये तो चेपुआ चूसने वाले हैं, इनको गन्ना कहां मिला है, गन्ना चीसे आप लोग ना, और गन्ना के बाहर निकलता है रस निकल जाता है चेपुआ, ये चेपुआ चूसे हैं, इनको गन्ना कहां से मिला है, नारद जी का संयोग कहां हुआ है, इन लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। कहते हैं जब तक से महत्पाद यद रजो अभिषेकम नैसामति, बहुत सुंदर सुंदर बात, मही यशाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानां वृत्त यावत, जब तक से साधुओं की कृपा नहीं होगी तब तक से ये लोग वो ऐसा ज्ञान कहां होगा। तो प्रहलाद जी बहुत सुंदर ज्ञान दिए, तो एक तो अपने बाप को दिए थे, अब सबको सामने बोलने लगे, और गुस्सा आया, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद पर खूब अत्याचार किया, हाथी के पैर तले दबवाया, समुद्र में फेंकवाया, पहाड़ पर से फेंकवाया, आग में जलाने का प्रयास किया, क्या क्या प्रयास नहीं किया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन इतना होने के बाद भी सब जगह से एक ही बात आ रहा था, एक ही बात आ रहा था कि प्रहलाद मर नहीं रहा है। हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि अब मर जाएगा, अच्छा है एक अंग को काट देना जो कि सब अंग को खराब करता है, तो एक गण को काट देने से कोई तकलीफ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु प्रयास कर रहा था मारने के, नहीं मर रहे थे। तब ये सन और अमरक देखे कि जिनके भय से संसार के सब प्राणी कांपते थे, सबका सिर झुक जाता था, आज वो इतने दुखी हैं। एक छोटे बच्चे प्रहलाद को नहीं मार पा रहे थे इसलिए दुखी था हिरण्यकश्यपु। तब एक गुरु पुत्रों ने कहा कि हे महाराज आप दुख मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि एक चांस और दीजिए, कहे बदमाश कहेंगे तुमने चांस तो दिया था कि तुमने क्या कर दिया, तब से देखा मैंने तुम्हें क्या किया, तो कहा नहीं ऐसा कीजिए कि इस बार हम वो सिखा करके लाए। कहा ठीक है ले जाओ। फिर लेकर के गए, लेकिन संड और अमर अपने ही अनुसार थे ये लोग। तो ये लोग कहे कि नहीं ऐसा कीजिए इसको बंदी बनवा दीजिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा और हमारे पिताजी आएंगे तो वो सिखा देंगे इसको। तो इसको हम ले जाते हैं, बंदी बनाकर रखेंगे और बाद में इसको सिखा देंगे। कहा ठीक है ले जाओ। अब इधर ये लोग, जब मैं ये प्रसंग पढ़ता हूं तो हमारे स्कूल में, मिडिल स्कूल में एक हिस्ट्री के टीचर थे, वो आते थे बेंच पर बैठते थे, कहते पानी लाओ, नरहरी याद है पहाड़पुर के मास्टर साहब, पानी लाओ, पानी लाए, दुर्लभ बोला ए इधर आओ इधर आओ, अपने गांव से पैदल आया हूं पैर दबाओ। हम पैर दबा रहे थे, पड़े हम नींद आ गया, बेंच पर सो जाते थे और हम लोग बाहर खेलने चले जाते थे। तो वैसे ही प्रहलाद जी के जो एक टीचर थे एक समय, प्रबंध डोमेस्टिक वर्क के लिए पत्नी का कोई आदेश आया होगा घर से, तो पत्नी का आदेश पालन करने के लिए प्रहलाद जी, सॉरी न प्रहलाद जी, संड और अमर सब्जी इत्यादि खरीदने बाजार में चले गए बेचारे। इधर प्रहलाद जी अकेले थे और इनके मित्र थे, तो सब लोग, एक तो राजा के बेटे थे ही, इनका स्वभाव आचरण चाल चलन मित्रवत व्यवहार था, तो सब के सब इनके क्लासमेट इनको बड़ा पसंद करते थे। इसे सीखना चाहिए, समस्त प्रचारकों को प्रहलाद महाराज से यह बात सीखना चाहिए। 5 साल का बच्चा यह बात सिखा रहा है। यदि हम दूसरों को प्रचार करना चाहें तो जितना प्रचार हमारे आचरण से हो सकता है, हमारे व्यवहार से हो सकता है, उतना प्रचार फिलॉसफी से नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी आचरण से प्रचार किए थे, फिलॉसफी तो अब देंगे, पहले आचरण से। उनका सुशील आचरण था, ये लोग उनको सम्मान करते थे, मृदुभाषी थे, बांट करके खाना जानते थे, पहले उन लोगों को खिलाते थे बाद में स्वयं खाते थे, इत्यादि इत्यादि बहुत से आचरणों का वर्णन किया गया प्रहलाद महाराज के नरसिंह पुराण में। तो प्रहलाद जी इस प्रकार से आचरण कर करके उनके दिल को जीत लिए थे। और जब आप किसी के दिल को जीत लेंगे तो उसको बोलिए कि आप एक माला जप करो, अरे बराबर मैं 16 माला जप करूंगा एक माला के, केवल आप कह दीजिए एक बार। तो वैसे ही चाहे वो लाइफ मेंबरशिप प्रीचर हो, चाहे कोई कल्टीवेशन करने वाला हो, चाहे यूथ को, चाहे लाइफ मेंबर किसी को, मैं अपने शहर में कहता हूं कल्टीवेशन एक ऐसा वस्तु है पेड़ लगाने के समान है। जब शुरू शुरू में पेड़ लगाते हैं तो उसका रक्षा करते हैं चारों तरफ से, पानी डालते हैं, और बाद में धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा हो जाता है आम का पेड़, तो एक दिन में पानी डालने हम नहीं जाते हैं, एक दिन भी रक्षा करने नहीं जाते हैं, लेकिन जब तक से आम का पेड़ रहेगा वो आम का फल हमको देता रहेगा, लेकिन शुरू में उसका देखभाल। वैसे ही जितने भी मेंबरशिप प्रीचर हैं आप लोग सीख लो, मेंबर बनाना आसान है, एबीसीडी है, लेकिन उनको कल्टीवेट करो। जब कल्टीवेट कर लोगे तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वो पूछेंगे क्या करूं प्रभु जी, कोई प्रोजेक्ट हो कुछ भी हो, वो दिल खोल करके चेक देंगे, पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, देंगे। वैसे ही यूथ प्रीचर लोग हैं IYF, यदि हम जो बच्चे हैं उन लोगों को इस प्रकार से कल्टीवेट करें तो अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, और फिर आश्रम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जगह नहीं रहेगा मंदिर में। तो कल्टीवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज कल्टीवेट किए थे अपने इन बंधुओं को, अपने क्लासमेट लोगों को, कि ज्यों ही संड और अमरक बाहर गए, प्रहलाद महाराज जो उपदेश देना शुरू किए, कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतान यह
दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। यह बात जब प्रहलाद जी बताए और जब पूरा शिक्षा दिए, जब बालकों ने यह जब शिक्षा सुन लिया तो सुनने के बाद बालकों को आश्चर्य हुआ, कह रही प्रहलाद इतना अच्छा बात जानता है, इतना अच्छा बात जानता है। प्रहलाद जी जो जो बात कहे वो सब बात ये बालक लोग बड़े ध्यान से सुने और प्रैक्टिस भी करना शुरू किए। प्रहलाद जी ने कहा कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो लोग बोले। प्रहलाद जी का ताली बजाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लो ये हमसे आगे बढ़ गए, मैं बोलता हूं एक बोलते दूसरा बोलते हैं। प्रहलाद जी के गुरु भाई ऐसा ही कर रहे थे, पर ताली बजाओ पहले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रहलाद जी बोले नाचो, अभी नहीं आप मत ना, वो बोले नाचो, वो नाचने भी लगे। फर्स्ट क्लास का कीर्तन हो गया, खूब पसीना चू रहा था, थक गए। तो कह रहे अरे पट्टा ये बताओ तुम, ये इतना अच्छा तू ज्ञान दे रहा है, ये तो ज्ञान सीखा कहां से? क्योंकि जानते थे कि हमारे साथ में हमारा सब पार्टी है, साथ में ही आए। कोई जैसा कि गुरु पुत्रों ने पूछा था, कहा था कि न मत्त प्रणीत न पर प्रणीत, तो ये लोग भी वही बात लेकिन पॉजिटिव पूछ रहे। ये बताओ ऐसा ज्ञान तो कहां सीखा? तब प्रहलाद जी कहना शुरू किए, किस प्रकार से जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, मैं अपने मां के गर्भ में था और उस समय समस्त देवता लोग मेरे पिता से भय खा रहे थे, तो मेरी मां गर्भवती थी, तो इंद्र एक प्लॉट रचा और मेरे मां को चुरा कर ले जा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं भी अपने पिता के समान होऊंगा, इसलिए मुझे मारना चाहता था। लेकिन रास्ते में हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी मिल गए और वे हमारे मां को छुड़ाए और अपने आश्रम में लाए। आश्रम में मेरी मां रहने लगी और मैं वहां पर अपने गुरुदेव नारद जी से यह ज्ञान प्राप्त किया था। करी नारद जी से कितना साल का तू था उस समय? कहा मैं मां के घर में था। कहा तू वहां सीख लिया? अरे भक्ति कहीं सीखी जा सकती है, मां के घर में भी सीख सकते हैं, मरने के बाद भी कोई भक्ति कर सकता है, जानते हैं आप लोग? मरने से पहले कर ही सकता है, मरने के बाद भी कर सकता है। इसीलिए लोग ले जाते हैं ना टांग करके, तो क्या बोलते हैं? राम नाम। थोड़ा जोर से बोलो ना, राम नाम। सबके उस समय नहीं सुनोगे, सुनोगे लेकिन अभी सुन लो। तो राम नाम सत लोग क्यों बोलते हैं? उसको बोलते हैं तू बोलो राम नाम सत्य, राम का नाम लो तो मरने के बाद भी राम का नाम ले सकता है वो। 13 दिन समय होता है राम का नाम लेने के लिए है? जब शरीर मिल जाता है तो ज्ञान खत्म। जब तक से शरीर नहीं मिलता है तब तक से मन बुद्धि अहंकार के साथ में रहता है। शरीर जल जाए तो भी कोई बात नहीं, शरीर खत्म हो जाए जल जाए इसे कुछ लेना नहीं है। प्रमाण इसका है सपना, सपना हम देखते हैं कि बेड पर सोए तो हुए हैं, शरीर तो यहीं पर है ना, अमेरिका में कुछ घूम रहे हैं है? चाहे वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे हैं, शरीर तो यहां पड़ा हुआ है, शरीर जल गया खत्म हो गया, लेकिन हम गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे हैं। तो मरते समय तक, मरने के बाद भी जब शरीर जल जाता है तो कान काम करना बंद कर देता है,
जब तक से शरीर रहता है काम कान काम करता है, तो मरने के बाद भी भक्ति कर सकते हैं और शरीर जलने के बाद भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार शरीर मिल गया तो सब ज्ञान चौपट खत्म, कुछ भी नहीं याद रहेगा। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जन्म और मृत्यु हमारे ज्ञान को खत्म कर देते हैं, मृत्यु और जन्म दो चीज। एनीवे, तो ना भक्ति ऐसा चीज है कभी कोई कर सकता है। तो नारद जी के मुखारबीन से प्रहलाद जी ने कहा कि मैं मां के घर में सीख लिया था। कहा अच्छा, अब तब जब पूरा बात नारद जी से जो सीखे थे बतलाए, तो फिर कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन में आनंद आता था, वास्तव में कीर्तन में आनंद आता है। जो नए भक्त, हम लोग थोड़ा बुढ़े हो गए हैं, जो जवान लड़के हैं आज भी, मैं कल लबी में बैठा देखा था, कल गुरु पूजा कौन गा रहा था है? तमाल जी गा रहे थे। मेरा दो लड़के यहां पर जंप कर रहे थे है? कौन कौन थे? उजला कपड़ा वाले थे, खराब नहीं अच्छा कह रहा हूं, समझते हैं डरते हैं। कौन था मैं जानता हूं, एक लड़का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है, कहां है? एनीवे, दो लड़के हाई जंप कर रहे थे, खूब हाई जंप कर रहे थे। तो मुझे याद आ रहा था 1980s का, मैं अभी तो मोटा हो गया, बहुत पहले पत्र था, ये देखा है फोटो कहीं देख लेना, अहमदाबाद में लगा के रखा है मेरा फोटो, वो पतला वाला फोटो। तो नरसिंह चैतन्य प्रभु और हम जंप करते इसको छूने के लिए, ये देख रहे हो ना ऊपर वाला, यहां से जंप करे उसको छूने के लिए। मैं वही देख रहा था कल, लड़के इतना जंप कर रहे थे, स्प्रिंग है पर में, स्प्रिंग है तो अच्छा है। कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है नाचना। जो नाचेगा, भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि कैसे है, नर्तते च मद्भक्त युक्त भुवन उपनाति, उद्गायते नर्तते च मद्भक्त युक्त भुवन उपनाति, उद्गायते जोर से गाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और नर्तते च, और जो नाचता है। पुराणों में वर्णन किया गया, महाभारत में वर्णन है, भगवान कहते हैं गीतनानी च माम नामानी नर्तन्ते च सन्निधौ, जो साथ में मिलकर के नाचता है गाता है अर्जुन, वो मुझे खरीद लेता है। तो नाचना गाना बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रहलाद जी के मित्र ने कहा कि फिलोसफी ज्यादा सुन लिया भाई, अब थोड़ा चलो हो जाए कुछ, अब डांस हो जाए। अब नाच गान होने लगा, जब खूब कीर्तन होने लगा तब गुरु जी लोग आए अपना सब्जी का थैला लेकर के। देखिए क्या हो गया है आश्रम में, क्या हो गया समझ में उनको नहीं आ रहा था। सोचे कि बाप रे बाप, अब तो हम लोगों का खटिया खड़ा बिस्तर गोल होगा, अब गए हम काम से, बड़े भयभीत हो गए, स्ट्राइक हो गया, सब बच्चे हरे कृष्ण वाले बन गए, प्रहलाद सब का दिमाग खराब कर दिया। नारद जी कहते हैं अब यह अध्याय शुरू हो रहा है, जिस अध्याय का 17वां श्लोक है, अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम जुगृही निरवध्य त्वान्नैव गुरुन अनुशिक्षितम। तो जब ये देखे तो डांटे, और डांट दे तो लड़के सब बैठ गए, तो डर रहे थे, तो पूछे कि बताओ हम पढ़ा कर जो कहते बताओ। तो बच्चों को जो लास्ट पढ़ाया जाता है वो याद रहता है, पहले वाला भूल जाते हैं। तो गुरु जी का पूरा भूल गए, स्लेट साफ, जो प्रहलाद जी बताए थे वो सब हरे कृष्ण का प्रचार करना शुरू किए। अब अथ दैत्य सुता सर्वे, जैसा कि दैत्य के बेटे लोगों ने जो सुना था प्रहलाद जी से, तद अनुवर्णितम, वही वर्णन करना शुरू किए जो सुने थे। अब गुरु के बेटे संड और अमरक जब देखे कि रे रीत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं, आचार्यम श्रुतः तेषाम बुद्धि एकांति संस्थिताम, उन्होंने देखा तो इन लोगों का मन बुद्धि भगवान के चरणों में एकांतिक भाव से लग गया है, कुछ सुनाइए इनको नहीं पड़ा है, केवल हरे कृष्ण बोलते जा रहे हैं। आलक्ष्य, जब ये देखे, आलक्ष्य मतलब समझ गए, प्रोतया समझ गए, क्या समझे, उन बच्चों के भी समझे, यदि हिरण्यकश्यपु सुनेंगे तो उनको क्या होगा वो भी समझे और अपना गति क्या होगा ये भी समझे। इसलिए यहां पर आलक्ष्य शब्द कहा गया है, आलक्ष्य जो दिखाई न पड़े लेकिन समझदारी हो सकते हैं। आलक्ष्य जब समझ गए तो भीतर उन्हें बहुत भय हुआ। आलक्ष्य भीतर तत्वरितो है, भय के चलते तत्वरित मतलब तुरंत वे लोग क्या किए, राज्ञ आवेदन यथा भागते भागते अपना धोती उठाए और भागते, जूता चप्पल उधर छूट गया, भागते गिरते भराते भागते भागते गए हिरण्यकश्यपु के पास और जा करके वहां पर कहने लगे। कहते हैं महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ तो सब बात बताए। हां जोड़ करके डर रहे थे, कांप रहे थे क्योंकि लास्ट चांस दिया गया था, कुछ नहीं कर पाए और ज्यादा प्रचार हो गया। कहा कि अरे पहले तो आपका एक ही बेटा बदमाश था, अब सब के सब बच्चे हरे के सुवाले हो गए, सब के सब हो गए, क्या करें महाराज, अब हमारे बस का बात नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हिरण्यकश्यपु सबको बुलाया, बुलाने चला गया वहां पर, गुरु के पुत्रों को चला, चलो हम देखते हैं। गया हिरण्यकश्यपु, देखा वहां पर फर्स्ट क्लास का सत्संग हो रहा है, सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हिरण्यकश्यपु डांटते हुए प्रहलाद जी को, क्यों जानता था कि घर का भेदिया लंका डाह यही है, प्रहलाद ही है जो कि हमारे सब बच्चों को खराब किया है, इसलिए कहता है हे दुर्विनीत मंदात्म कुलभेद कर अधम अस्तब्धम मशासनो अवृतम नेशम त्वाम यमक्षयम। कहते हैं हे दुर्विनीत, प्रहलाद जी बड़े विनीत भाव से हाथ जुड़कर वहां पर खड़े थे, कहते अरे बेशर्म कहीं का, दुष्ट कहीं का, मंदात्म यानी अब तुम मर जाएगा, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, मंदात्म मंद आत्मा मूर्ख, कुल भेद कर खानदान में कलंक लगाने वाला कुल भेदी है, अधम अरे नीच कहीं का, तुम इतना हठीला हो गया है, मत शासनो उद्वृतम तुम्हारे शासन का उल्लंघन कर रहा है, तू सोच रहा है कि हरे कृष्ण का प्रचार कर दूंगा तो भगवान तुम्हें बचाने आएगा, कृष्ण बचाने आएगा, देखता हूं। कहते ने से त्वाम अद्ध यमक्षयम, आज मैं तुम्हें जमराज के लोक भेजने वाला हूं, आज मैं जमराज के पास तुमको भेजूंगा। देखिए अब तक से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने का प्रयास नहीं किया था, प्रहलाद को मरवाने का प्रयास किया था लेकिन अपने हाथ से नहीं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बतलाए हैं इसी इन्हीं श्लोकों के का लेक्चर दे रहे थे, कहते कि देखिए पहले असुर होने के बाद भी हिरण्यकश्यपु में कितना ज्ञान था कि अपने हाथ से अपने बच्चे को नहीं मारना चाहता था, पहले के बाप मां अपने हाथ से अपने बच्चे को नहीं मारते थे लेकिन आज के बाप मां इतने निकृष्ट इतने दुष्ट इतने अधम हो गए हैं कि जो बच्चा गर्भ से बाहर भी नहीं आया है उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए गर्भपात करा करके मार डालते हैं। ये कितने नीच हैं आजकल के बाप मां, पहले बाप मां ऐसे नहीं थे। हिरण्यकश्यपु मारना नहीं चाहता था, मरवाना चाहता था, अब जब हिरण्यकश्यपु का चैलेंज प्रहलाद जी सामने सामने कर दिए तब, और वो भी जब तक से अकेला हरे कृष्ण वाला था प्रहलाद कोई तकलीफ नहीं था, जब प्रचार करने लगे सबको अब खराब करने लगे पूरे शरीर में कैंसर फैलाने लगे तब कहा कि अच्छा इसको काट डालना, तब उसने निर्णय किया कि मैं मारूंगा। कृधस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकामसहेश्वरा तस्य ते अभितान्मुढा शासनम किम बलो त्यगा त्यगा तेरे मूर्ख कहीं का। तो ये मालूम नहीं है कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोक कांपने लगता है, नायकों सहित सहेश्वरा अपने नायकों सहित तीनों लोक के प्राणी कांपने लगते हैं। तुम ऐसा मूर्ख है कि तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है। किम बलो अत्याग, तुम बहुत अति हो गया, वो तुम किसके बल से ऐसा काम कर रहा है, ये तुम्हें बल कहां से आ रही है। गुस्सा में व्यक्ति जब भी बात करेगा तो खराब ही बात करेगा, गुस्सा में कोई अच्छा बात नहीं करता है। कोई ऐसा बात करता है अच्छा में? गुस्सा में व्यक्ति गाली देगा, डांटेगा, चिल्लाएगा। गुस्सा जो है, गुस्सा करने वाले और जिसके प्रति गुस्सा की जाती है, दोनों को परेशान करता है। ईर्ष्या सबसे पहले, बाद में गुस्सा। गुस्सा तो सिम्टम है ईर्ष्या का, ईर्ष्या जलाता है। जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है उसे कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए भक्तों को कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जब ईर्ष्या करते हैं ना तो हम स्वयं जलते हैं, जिसके प्रति ईर्ष्या करते हैं उसको पता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब प्रहलाद से प्रश्न किया गया तुम्हें बल कहां से आ रहा है, तो प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद जी अब प्रश्न हुआ था, प्रहलाद जी कहे चलो अब समय आ गया है, पहले मैं अकेला था, हमारे साथ में इतने हैं। है? बल संघ में बल होता है, संघ हो गया है, हरे कृष्ण संघ हो गया है, दयाल और हरे कृष्ण पे बोलना हो। पिताजी आप बल का बात कह रहे हैं तो सुनिए, न केवलम मे भवतश्चराजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम परे अवरे परे अवरे अमी स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो जेन वशम प्रणीता। कथे महाराज आप बल का बात कर रहे हैं, हे राजन बल का स्रोत एक ही है, पावर हाउस एक ही है, वहीं से सबके पास बल आता है। बलवान से बलवान व्यक्ति भी, ब्रह्मा से लेकर चिड़ी पर्यंत, सब लोगों का बल वहीं से आता है। तो मानो हरिदर्शन कहता है कि मेरा भी बल वहां से आता है, कहा बिल्कुल निसंदेह आपका भी बल वहीं से आता है, बल का स्रोत एक ही है। कहा कौन है, कौन है बल का स्रोत, पावर हाउस कहां पर बताओ। तो प्रहलाद जी पावर हाउस का वर्णन करते हैं, स ईश्वर, वह ईश्वर है। जिस पावर हाउस के विषय में आप पूछ रहे हैं वह स ईश्वर, वह पावर हाउस भगवान है, सबके नियंता हैं, सबके कंट्रोलर हैं, जो आपको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मानव हृदय को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप डर रहे हो, ये डर रहे हो कंट्रोल के चलते। जब कंट्रोल होता है, पुलिस वाले आते हैं तो थोड़ा डर लगता है ना, तो पुलिस के हाथ में कंट्रोल है। इनकम टैक्स वाले आ जाएं तो डर लगता है ना, क्यों, उनके हाथ में कंट्रोल है। तो जिसके हाथ में कंट्रोल है उसे सब लोग डरते हैं। तो पिताजी आप डर रहे हो इसका मतलब आप नकली ईश्वर हो, असली ईश्वर कोई और है। ईश्वर डरता नहीं है। एक उदाहरण है कि कुंभ मेला लगा था प्रयाग में, सब साधु लोग झगड़ा कर रहे थे कि पहले हम स्नान करेंगे, पहले हम स्नान, शाही स्नान के लिए कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था कि स्नान पहले कौन करेगा। तो वहां से एक विदेशी जा रहा था, तो कुंभ मेला में सब प्रकार के लोग आते हैं, तो साधुओं ने कहा कि देखो सब लोग अपने अपने भगवान का बड़ाई करेंगे, ये विदेशी भगवान के विषय में नहीं जानता है, चलो इसको बुलाते हैं, ये निर्णय करेगा किसका भगवान बड़ा है। ठीक है, तो उसको बुलाया गया, जो कुछ भी नहीं जानता है उसको बुलाया गया, भगवान का निर्णय करें भगवान कौन है, क्योंकि पक्षपाती नहीं करेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। तो बोला भाई क्या बात है, मैं तो कोई गलती नहीं किया हूं, आप साधु महात्मा लोग क्यों हमको बुलाया। कहा नहीं नहीं तुमको अभी हम जज बना रहे हैं, तुमको निर्णय करना है। देखो हम सब शाही स्नान करना है, समय बीतते जा रहा है, ये पता लगाना है कि बड़ा भगवान कौन है, जिसका बड़ा भगवान है पहले शाही स्नान करेगा। तो कहा भगवान का गुण क्या है, भगवान किसे कहते हैं, पहले बताओ तब तुम बताएंगे, जिसमें सब लोग सहमत हो जाओ, भगवान गुण बताओ। तो कहा भगवान वह है जिसको किसी से डर नहीं है। सबसे पूछा आप सहमत हो, आप सहमत हो, आप सहमत हो, सब सहमत हो, हां हम सहमत हैं। तो देखना शुरू किया तो एक काली जी का लेकर खड़े थे, दुर्गा जी का, कहा ये भगवान नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकती। कहा क्यों, क्योंकि इनको डर है, ये दस हाथ है, दस हाथ में अस्त्र ली हुई है, तो इनको डर है, ये भगवान नहीं हो सकता। साइड करो, तो साइड जाओ। राम जी को देखा, वहां देखा धनुष बाण, कहा इनको भी डर है, ये भी धनुष बाण लिए हुए हैं अपना रक्षा करने के लिए, ये भगवान नहीं हो सकता। साइड करो। भगवान शिव को देखा, त्रिशूल था, कहा इनको भी डर है, त्रिशूल रखे हैं, भगवान नहीं हो सकता। साइड करो। जब कृष्ण को देखा, बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ यह पट्टा भगवान हो सकता है, इसे किसी से डर नहीं है, बांसुरी बजा रहा था, कोई डर नहीं है। तो भगवान वह है जिसे किसी से डर नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार प्रहलाद जी यही कह दिए कि हे पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान का भ्रम पाल कर रखे हो, भूल जाओ। स ईश्वर अकाल उरु क्रमो, स वह ईश्वर है, वह सबका नियंता है, उनके कार्य उरुक्रम है, असाधारण है। उनके इंद्रियों में, हम लोगों के इंद्रियों में जो बल है, ओज सह सब सब बल जो है उनसे ही आता है। वो गुणत्रयेश हैं, सृष्टि पालन और ये तीनों गुणों के स्वामी हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी अपने पिता को सुंदर सुंदर ज्ञान दिए, तब हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया और कहता है कि सही में तू मरना चाहता है, अभी मैं लास्ट चांस तुम्हें दे रहा था, लेकिन लगता है कि अब तू बचने वाला नहीं। कहते व्यक्तम तम मृत्यु कामोसी, मृत्यु कामोसी, सही में तुम्हें मृत्यु की इच्छा है, तुम मृत्यु को चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति मरने लगता है तो बकवास करता है, है? उल्टा सुल्टा बोलता है। कहते हैं व्यक्तम तुम मृत्यु कामोसी, लगता है तुम मरने वाला है, इसलिए उठपटांग बात अब तुम कर रहा है। यो अति मात्र विकथ से, इसलिए तुम बड़ा बड़ा डिंग हाँक रहा है, झूठा मूठा का बात कर रहा है कि सबका कंट्रोलर भगवान है, सबका बल उसी से आता है, हमारी इंद्रियां उसी के बल से काम करती है, इत्यादि इत्यादि। कहते हैं मुमूर्षुणाम ही मदांत ननु स्वी स्वी विकलवा गिरा, ये उठपटांग शब्द तू कह रहा है, अरे मूर्ख अब तुम मरने वाला है, है? मैं देखता हूं कैसे तुम्हारा भगवान आकर तुम्हारा रक्षा करते हैं। तू कहता है ना कि वही सबके रक्षक हैं, देखता हूं पहले तुम्हारा रक्षा कैसे करते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं आप इसका चिंता मत कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कैसे रक्षा करते हैं, वो ऐसे रक्षा करेंगे वो पता भी नहीं चलेगा पिताजी। कहता अच्छा, जिस व्यक्ति को तो सबका कंट्रोलर कहता है, इस कहता है, ईश्वर कहता है, कहां कहां रहता है, उसका एड्रेस तो दो मुझे, मैं तो उसे बहुत दिन से खोज रहा हूं, सब पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड को ढूंढ आया, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बात सही बताए थे, सही बात कह रहा था, क्योंकि आठवें स्कंद में वामन भगवान जब बलि महाराज का प्रशंसा कर रहे थे, तो बलि महाराज से कह रहे थे कि भाई आपके खानदान में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, है? अरे आपके परदादा हिरण्यकश्यप को देखिए, वो तो इतने थे कि विष्णु उनके डर से भाग रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। एक समय तो ऐसे आया कि विष्णु को कहीं रहने का जगह नहीं था, तो भाग करके उसके दिल में छिप गए, दिल में छिप गए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मामन के रूप में बोल रहे हैं कि मैं जाकर उनके दिल में छिप गया, और आज तक हिरण्यकश्यप खोजता रहा कहां है, कहां है, दिखाई नहीं पड़े, तो वही पूछ रहे कि भाई मैं खोज रहा हूं उसको, बताओ कहां है तुम्हारा भगवान, कहां है। कहते हैं यह त्वया मंदभाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर, अरे मंदभागी अरे मूर्ख, जो तुम जिसको जगदीश्वर कहता है मेरे और मद अन्य मेरे अलावा जो दूसरे को ईश्वर कह रहा है वो ईश्वर है कहां, मैं तो खोज रहा हूं बहुत दिनों से, वो जीवित है कि मर गया। कभी कर लो मरे हुए आदमी का भी गुणगान करते हैं लोग है? मर जाने के बाद वो इतना अच्छा आता है ऐसा आता है, तो अभी जीवित है कि मर गया, कहता बिल्कुल जीवित है। कसो यदि हां जीवित है, तो अच्छा जीवित है कहां, कहा सब जगह है, हम में तुम में खड़द खंग में घड़घड़ ब्यापे राम सब जगह है। अच्छा कसो यदि सर्वत्र, यदि यदि सर्वत्र है सब जगह विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। कहता आपको आंखें कहां है कि दिखाई पड़ेगा, आंख होना चाहिए ना। तो ठीक है जब सब जगह है तो क्या खंभे में भी है, कस्मात असंभे न दिशते, ये सब जगह है असंभ में दिखाई क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब इतना कह करके और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू बिना सिर और धड़ का बात तू कर रहा है, बकवास तू कर रहा है, है? अभी मैं देखता हूं, तू कहता है खंभे में भगवान तुम्हारा है, मैं देखता हूं और नहीं होगा तो आकर के और मैं अपने हाथ से, आई मीन हिरण्यकश्यपु तैयार हो गया था प्रहलाद को मारने के लिए लेकिन फिर भी नहीं, अंतिम चांस, अंतिम चांस, लेकिन मरते दम तक प्रहलाद को मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, मरवाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मारा नहीं। अब क्रोध में आकर के प्रहलाद महाराज का भर्सना करते हुए एवं दुरुक्तुम मुहुर मुहु अदर्यन रुषा सुतम महाभागवतम महासुरा खडंग प्रयुतोत पतितो बरासनात अस्तंभ तदाड़ा तिवलम समुष्टिका। गुस्सा में आकर के हाथ में तलवार लेकर के दौड़ते हुए गया और मुक्का स्वमुष्टिका मुक्का से उस स्तंभ पर खंभे पर प्रहार किया। इतना बलवान था, जब खंभे पर प्रहार किया तो भगवान वहां से प्रकट हो गए। उसके प्रहार से इतना बलवान था लेकिन भगवान वहां से प्रकट हुए और भगवान को देखा नहीं, केवल आवाज सुनाई पड़ा। आवाज सुनकर चलो देखा भाई ये कहां पर है, कहां पर है, कहां दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस उद्गम का स्थान ढूंढ रहा था तब तक से सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। केवल आवाज सुना था, भगवान का दर्शन भी नहीं किया था, केवल आवाज सुना था और पता लगाने का प्रयास करता आवाज कहां से आ रही है, वो देख रहा था। तब तक से वहां पर सत्यम विधातु टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ हिज डिवोटी, भगवान अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करते हैं। वो हिंदी में एक भजन गाते हैं ना, अपना मान टले तो टले भक्त का मान न टलते देखा, ऐसे कुछ गाते हैं ना, असीम जी कैसे गाते हैं, तमाल जी कहां है, वो कहे ऐसा कुछ है ना, भक्त का मान टलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा, ऐसे कुछ है ना, भगवान नियम बदल देते हैं। तो हिरण्यकश्यपु चैलेंज किया, क्या भगवान तुम्हारे खंभे में हैं, भगवान कहीं से आ सकते थे, उनको खंभे से आने का कोई जरूरत नहीं था लेकिन खंभे से आए, क्यों, सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। एक अवतार में चार लोगों के बात को सत्य किए हैं, प्रथम ब्रह्मा जी के बात को, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऊपर नहीं नीचे नहीं ये नहीं वो नहीं इससे नहीं उससे नहीं, ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव के रूप में आए, जो कि न तो मनुष्य थे न तो पशु थे, और मारे भी न घर में मारे न बाहर मारे, न अस्त्र से मारे न शस्त्र से मारे। तब कर कमल बरे न कमद भूत श्रृंगा दलित हिरण कसपूतनु भृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए। दूसरा, जय और विजय को श्राप हुआ था चतुष्कुमारों के द्वारा। तो चतुष्कुमारों को के द्वारा श्राप दिए और कहते भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो चतुष्कुमारों की बात को रखने के लिए। तीसरा, नारद जी के बात को रखने के लिए, क्योंकि कयाधु को ले जा रहा था इंद्र। नारद जी ने कहा किसी गर्भ से जो पुत्र होगा प्रहलाद, वही इसके बाप अपने बाप की मृत्यु का कारण होगा। तो नारद जी की बात को रखने के लिए प्रहलाद के लिए भगवान आएंगे। प्रहलाद ने भी कहा, भगवान ने भी कहा था ये प्रहलाद प्रखोभत आचार करे तब मैं आऊंगा नारद जी की बात करने के लिए। और चौथा, प्रहलाद जी की बात को सत्य करने के लिए। तो सत्यम विधातु निजभृत भाषितम, अपने भृत अपने दासों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान आए। कहते व्याप्ति चभूतेषु अखिलेश्चात्मना, हालांकि भगवान सब जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, फिर भगवान आए। अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहम, अद्भुत जो शब्द है, जब भी भगवान आए हैं लीला करने के लिए तो उनके रूप को अद्भुत रूप कहा गया है। तम दृष्टवा अद्भुतम बालम, भगवान कृष्ण जब आए तो देवकी और वसुदेव उस अद्भुत बालक के रूप को देखे। वैसे ही रामायण में आया हुआ भगवान राम के लिए है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप। वैसे ही भगवान वामन देव के लिए अद्भुत रूप, जो भी लीला पुरुषोत्तम लीला के लिए आए हैं का रूप अद्भुत है। अद्भुत मतलब जो लौकिक न हो। बुद्ध और कल्कि का रूप लौकिक है तो अद्भुत नहीं है, लेकिन अन्य जितने 24 अवतार हैं उसका रूप अद्भुत है, जो लीला विलास के लिए आए हैं। तो यहां पर कहें तद अदृश्यताम, अदृश्यताम ऐसे दृश्य को कोई नहीं देखा था। सब बच्चा पैदा होते हैं मां के गर्भ से, अस्तम से कोई पैदा हुआ हो तो पहले बात पहाड़ से, ब्रह्मा जी भी हुए भगवान के नाभि से, भले लक्ष्मी जी से नहीं हुए लेकिन भगवान से तो हुए, लेकिन पहाड़ से आई मीन क्या नाम पिलर से कोई बच्चा पैदा हो जाए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कहीं से आ सकते हैं, भगवान स्वराट हैं। जन्मा दस्य तन्नता आदि चार थे सविज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। तो अदृश्यताम अद्भुत रूपम उद्वहन, कहते हैं उद्वहन है? उद्वहन मतलब धारण किए, भगवान रूप धारण किए। आचार्य गण कहते हैं कि भगवान नरसिंह देव का अपना रूप है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि चतुर्व्यूह में जो एक तो होता है अवतार और एक होता है विस्तार, तो विस्तार में है संकर्षण वासुदेव, संकर्षण अनुरुद्ध और प्रद्युम्न, और इन्हीं से अलग अलग अवतार होते हैं, 24 अवतार इन्हीं से हुए हैं। तो प्रद्युम्न जो हैं, प्रद्युम्न के अंश हैं नरसिंह भगवान, प्रद्युम्न के अवतार हैं नरसिंह भगवान। इनका पहचान क्या है? नरसिंह भगवान का पहचान है वैकुंठ का, जहां पर निवास करते हैं, उनका चक्र और शंख ये ऊपर के हाथ में है, और गदा और कमल नीचे के हाथ में है। ये नरसिंह भगवान का अपना स्वरूप है, चतुर्भुज रूप में नरसिंह भगवान है वैकुंठ में। लेकिन वही नरसिंह देव यहां पर आए, इसीलिए यहां पर कहा गया उद्वहन रूप धारण किए। यह रूप वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में यह रूप नहीं है, उनका चतुर्भुज रूप है वैकुंठ में। लेकिन यहां इस संसार में इस रूप में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी को ने जो दिया था आशीर्वाद उनको पूरा करने के लिए। इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत जानने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत तो बोलिया चिते ना करो आलस, ये सिद्धांत है। कितना सुंदर बात कहते हैं, अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहन, वहन किए, धारण किए, अद्भुत रूप में आए नहीं। कृष्ण के लिए आया हुआ है अद्भुतम बालम, राम के लिए आया हुआ है बोलो रूप धारण, यहां पर रूप धारण किए हैं, अद्भुत रूप धारण किए हैं। लेकिन ये अद्भुत रूप जो है वो दिव्य है, इसलिए अद्भुत कहा गया है। ये ट्रांसजेंडल भगवान का शरीर है, सशरीर भगवान गए। अदृश्यताम, इसको कभी देखा किसी ने था, अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहम अस्तंभे सभायाम नमिगम नमानसम। वो अद्भुत रूप क्या था, कौन सा अद्भुत रूप धारण किए थे, किस लिए वो अद्भुत था, यहां पर इस पार्टिकुलर सिनेरियो में बता रहे हैं। अस्तंभे सभायाम, सभागृह के अस्तंभ में जन्म लिए, इसलिए अद्भुत था। एक कारण, अन्य तो कारण है ही, लेकिन एक कारण है कि बिना बाप मां के पिलर से जन्म लिए, इसलिए अद्भुत चीज है अस्तंभे सभायाम। दूसरा कहते हैं न मृगम न मानुषम, न तो वे मनुष्य थे और न शेर थे, सिंह थे। ये भी अद्भुत है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को चकनाचूर करना था, हिरण्यकश्यपु को डिस्टर्ब करना था। भगवान तो हाफ तो मर गया वो इनका रूप देख करके, भगवान का हिरण्यकश्यपु कह रहे मैं तो भूल गया ब्रह्मा जी से कहने में कि हमको नरसिंह का रूप मत दे, ना उसे मृत्यु ना हो। उसने कहा कि न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, लेकिन मुझे बुद्धि नहीं लगा कि मैं कह दूं कि मनुष्य पशु कॉम्बिनेशन से भी ना मरूं, इसलिए उसका दिमाग चकरा गया, 50% मर गया इसी से। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान के उस अद्भुत रूप का वर्णन किया गया है, अद्भुत कैसे है उसका व्याख्या किया गया है। मोस्टली तीन चीज बताया गया है, भक्त के इच्छा को पूरा करने के लिए, भक्त के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान अद्भुत रूप धारण किए। हालांकि भगवान जो सब जगह विद्यमान है, फिर भी वह उस खंभा से आए, और वह रूप जो था वो अद्भुत रूप था, न मृग था न मनुष्य का रूप था। उसके बाद वह रूप कैसा था उसका वर्णन आगे करते हैं। देखिए एक बार कोई भक्त कह रहा था कि हम भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं। कहते क्यों प्रणाम करता है, क्योंकि हमारा रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं इसलिए, यानी उनसे भय लगता है, नरसिंह भगवान से भय लगता है। भय लगता है इसलिए प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रेम से प्रणाम करना चाहिए भगवान नरसिंहदेव को। भगवान का जो स्वरूप है वो ठीक वैसे ही है जैसे वैकुंठ वास हरि या विष्णु का स्वरूप है, वही सुंदर स्वरूप है। लेकिन जिसको भय है उसके लिए खूंखार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिसे भय नहीं है उसको बड़े प्यारे दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे लोग हरे कृष्ण मंदिर के छोटे बच्चे हैं, चाहे कांग्रेस जितने भी हरे कृष्ण वाले छोटे बच्चे होंगे, उनको भगवान का दो रूप सबसे अच्छा लगता है। आप लोग जानते हो कौन कौन? नरसिंह भगवान और जगन्नाथ जी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये दो भगवान का रूप बड़ा अच्छा लगता है। प्रहलाद जी के ये भगत लोग हैं, सब प्रेमी हैं। बड़े लोग थोड़ा डरते हैं भगवान को, राधा कृष्ण का सीताराम का अच्छा, लेकिन इन लोगों को ये अच्छा लगता है। जब भगवान नरसिंह देव का अवतार हुआ, जब आए सब लोग कांप रहे थे, ब्रह्मा जी थरथरा रहे थे, भगवान शिव थे, सब लोग कहे कि लक्ष्मी जी के पास कि आप जाइए, आपके प्रभु हैं, शायद आपसे मान जाए। हिरण्यकश्यप को जब मार लिए तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान का रूप मैं देखी हूं लेकिन ऐसा रौद्र रूप अभी तक नहीं देखी हूं, मुझे भी डर लगता है, वहां नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी भी हाथ मतलब कि हाथ उठा ली। तब प्रहलाद जी से कहा गया कि बेटा तुम्हारे चलते आए हैं, कोप को शांत करो नहीं तो पूरे सृष्टि को बर्बाद कर देंगे भगवान। ब्रह्मा जी जानते थे, ब्रह्मा जी को बहुत भय हो गया था, और प्रहलाद जी जाकर सष्टांग प्रणाम किए, कहे थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पिताजी को मार दिए हैं, बहुत अच्छा काम कर दिए भगवान, और बहुत में प्रार्थना किए प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी को भय नहीं था, प्रेम था। तो भगवान का भजन, भगवान को प्रणाम भय से मत करो, प्रेम से करो है? तो उन्हीं भगवान नरसिंह देव का वर्णन आगे के श्लोकों में इस अध्याय में किया गया है। ऐसे मैं आगे बढ़ सकता हूं लेकिन दो घंटा हो गया, एक सीटिंग भागवत का हो गया, हम नेक्स्ट शाम को होगा। हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान की, शील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हाँ,
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। जो अभी जो हिरण्यकश्यप के सामने नृसिंहदेव जब प्रकट हुए, तो हिरण्यकश्यप को मालूम नहीं था कि विष्णु का भी ऐसा एक रूप है। मालूम था क्या पहले? मालूम तो नहीं था कि भगवान विष्णु का भी ऐसा ही एक नृसिंह रूप धारण करते हैं। हिरण्यकश्यप को भी मालूम नहीं था?
मालूम था, मालूम था। वो भी भक्त था, असलियत सामने आ गई थी, सब याद आ रहा था कि भगवान ने तीन जन्म कहा था, ये पहला जन्म है, खत्म करना है। तब तो चैलेंज किया ना, भाग गया था वहां से, भागा नहीं, तो लौट के लड़ाई करना शुरू किया ना। वो जान गया था कि मैं मरने वाला हूं। आगे भागवत में यहीं पर वर्णन किया गया है, इसी जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो गया है उसके बाद में वर्णन किया गया कि हिरण्यकश्यप समझ गया कि बस बस ये भगवान विष्णु आए हुए हैं मुझे मारने के लिए। कौन श्लोक है? यहीं पर है, उसे मालूम हो गया था कि भगवान हमको मारेंगे। आगे इसी अध्याय में है, वन ऑफ द लास्ट श्लोक है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण रुजी, आपने बताया कि वैकुंठ लोक में भगवान का 400 फॉर्म है, तो वो यानी न मनुष्य न मृग ऐसा ही रूप है कि विष्णु जैसे?
पूरा रामायण हो गया, सीता जी का विवाह किससे हुआ वही पूछ रहे हैं।
नहीं, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये, मैं
तो आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पढ़ो, जहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए हैं, वहां पर जितने भी विष्णु अवतार हैं सबका रूप एक जगह है, केवल अंतर जो है वो शंख चक्र गदा पद्म से है, वो मैथमेटिक्स है, वो देखना पड़ेगा। दामोदर हैं, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म, शंख पहले है गदा बाद में है, चक्र कैसे है वो, जैसे नरसिंह भगवान है इनका गदा और कमल नीचे है और चक्र और शंख दोनों ऊपर है, ये नरसिंह भगवान का पहचान है। लेकिन सब विष्णु रूप चतुर्भुज रूप है सब, वहां पर नाम नरसिंह है, दामोदर भगवान भी है वहां पर, लेकिन वो रस्सी जैसा मैया नहीं बांधी है वहां पर, उनका नाम ही दामोदर है और उन्हीं के नाम से दामोदर महीना होता है हम लोग, तो दामोदर चतुर्भुज रूप में है। उनका भी वर्णन है कि उनके शंख चक्र गदा पद्म कैसे रहता है, वर्णन किया, ये वर्णन अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के आत्माराम श्लोक के बाद में, उसे पहले सर से पहले सनातन शिक्षा में है पूरा।
थैंक यू।
और कोई प्रश्न?
भगवान ने जब शिशुपाल और दंतवक्र को मारा तो दोनों की आत्माएं भगवान में विलीन हो गई, लेकिन ये उनका अंतिम जन्म था तो वो अपने स्वरूप में वापस जाने चाहिए थे ना, जय और विजय के रूप
चले गए ना, हो गए
उसमें, ऐसा होना था
मुक्ति, मुक्ति प्राप्त, मुक्ति केवल मैं कई बार बता चुका हूं, राम मुक्ति नहीं दे सकते हैं, नरसिंह मुक्ति नहीं दे सकते हैं, ये नरसिंह भगवान मारे तो उनको फिर जन्म लेना पड़ा, राम भगवान मारे फिर जन्म लेना पड़ा, केवल मुक्ति मुकुंद दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं, तो कृष्ण इन लोगों को मारे और बाद में अपने धाम को प्राप्त किए लोग। ठीक है, मुकुंद चरणाम्बुजम।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
ये बर्बादी ने सभी तरह से हिरण्यकश्यपु ने इस सूरज कावाली थी अपनी,
मैं समझाने क्या बोल रहे हैं,
बर्बादी के वरदान से हिरण्यकश्यपु ने सब तरह से अपनी इंश्योरेंस करवा लिया था कि मैं ऊपर नीचे
इंश्योरेंस करा लेता। हाँ, बिल्कुल
ऐसी हमारी भौतिक दुनिया में चार इंश्योरेंस कंपनी है, उससे अगर कोई माल इंश्योरेंस कराता है तो कोई चिंता नहीं रहती, कहां माल फूटेगा, लूटेगा, जलेगा, तूफान आएगा, ऐसी चार संप्रदाय है हमारे, उसमें हमारी एक में भी इंश्योरेंस होती है तो उसमें भगवत प्राप्ति निश्चित है।
बिल्कुल, हरे कृष्णा, इंश्योरेंस करा लीजिए सब लोग। हिरण्यकश्यपु इंश्योरेंस कराया लेकिन गलती करा लिया, उसे कराना चाहिए था सही इंश्योरेंस, ब्रह्मा जी महाजन है, वो इंश्योरेंस एजेंट हैं ब्रह्मा जी हैं, वो इंश्योरेंस का कर सकते थे, लेकिन वो उनसे इंश्योरेंस नहीं कराना चाहता था, वो चाहता था जो वही वो करे, वही चाहता था भगवान का, ठीक है चलो वो भी चलेगा। ऑल राइट, सो वी स्टॉप हियर। ग्रंथराश्रम भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, नरसिंह भगवान की जाय।